کا اثر لیتا ہے کہ جو ماحول میں معاشرے میں جو طریقے پھیلے ہوئے ہیں اس کا اثر وہ اپنے طبیعت پر لیتا ہے اور اپنا جیون ان سے متاثر ہو کر گزارتا ہے. جتنی بھی دین کی محنتیں ہیں ان ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک ایک کے اندر ماننے کی طبیعت بن جائے. ہاں کہ ایمان والا ہوتا ہی ہے ماننے والا. کس کا ماننا ہے؟ جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی بات ماننے والا بن جائے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کے اندر یہ دھیان آ جائے کہ میں پیدا نہیں ہوا ہوں, میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں جی نہیں رہا ہوں, مجھے میرا اللہ جلا رہا ہے, میری زندگی کی باگڈور میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان چیزوں کا جب دھیان آتا ہے تو آدمی کو پابند بننا آسان ہوتا ہے. ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں سیٹھ کے وہاں نوکری کرتا ہوں, اگر آگے پیچھے ہوا تو میری نوکری میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوکری کے بعد مجھے پگار ملے گا. اگر میں نوکری کے درمیان میں سیٹھ کی مرضی کے خلاف حرکتیں کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے نوکری سے نکال دے, اور اگر کوئی نقصان کروں گا تو میرے پگار میں سے پیسے کاٹ لے. تو ایسا آدمی غفلت کرے گا؟ ارے بولو بھائی, غفلت کرے گا؟ ایسے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, ہمارا جیون اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, موت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور جیسے جیو اس نے پیدا کیا اور ہمارا مرنا اس کے ہاتھ میں ہے, ایسے موت اور زندگی کے بیچ کے جتنے نفع نقصان ہیں وہ سب اسی کے پاس سے ہیں. دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو بات پیش آتی ہے وہ اس کی اچھا کے مطابق نہیں ہوتی. اچھا چلو بتاؤ, جتنے لوگ آج بیمار ہیں کوئی بیمار ہونا چاہتا ہے؟ ارے بولو بھائی, کوئی بیمار ہونا نہیں چاہتا لیکن ہو جاتے ہیں. کوئی غریب ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا لیکن ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا چاہتا ہے میرے چھوکرے نافرمان ہو جائیں؟ ارے بولو, لیکن ہو جاتے ہیں. کہ دنیا میں پچاسوں کام وہ ہیں کہ جس کو آدمی ہو اس کو چاہتا نہیں ہے, بلکہ وہ چیز نہ ہو بلکہ دوسری چیز ہو اس کی کوشش کرتا ہے. لیکن ان سب کوششوں کے باوجود دوسری چیز ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو مالدار بنانا چاہتا ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بجائے مالدار بننے کے غریب ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے اور صحت مند رہنے کے سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود, پچاسوں بار ایسا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحت مند رہنے کے اسباب اختیار کرتے کرتے بیمار ہو گیا. کیا بیمار ہو گیا وہ؟ تو اس کا جسم اس کو ساتھ نہیں دے رہا. اولادوں کو فرما بردار بننے کی زندگی بھر محنت کرتا رہا لیکن اولاد نافرمان ہو گئی. تو یہ باتیں سمجھا رہی ہے کہ جیون کی باگڑور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسم میں قسم قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے, آدمی روز کوشش کرتا ہے کہ نہ ہو, اس کا علاج کرتا ہے لیکن ہو جاتی ہے. تو جس اللہ نے پیدا کیا ہمارے جیون کی باگڈور اسی کے ہاتھ میں ہے. جیسے موت اور حیات اس کے ہاتھ میں ہے ایسے اس کا نفع نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اللہ نے اصول یہ بنایا کہ جو اس جسم سے اس کے رب کو راضی کرتے ہوئے جیے گا, اس کے مرضی کے مطابق اس کو راضی کرتے ہوئے جیے گا, اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم اچھا جینا نصیب کریں گے. اچھا جینا جو اللہ نے طے کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیے. ہاں یہ دھرتی جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. کس کی ہے بولو؟ اور اس کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سارا ہمارا بنایا ہوا ہے. پھر دوسری بات اس کے بعد فوراً فرمائی کہ جب ہمارا بنایا ہوا ہے تو اس میں چلتی بھی ہماری ہے. کس کی چلتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں چلتی ہماری ہے. الا لہ الخلق والامر. لوگوں سے کہو کہ یہ دنیا ہم نے بنائی ہے, یہ کائنات ہماری ہے اور اس میں ہماری ہی چلتی ہے. کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. اس لیے دنیا میں ہم دیکھیں کہ پچاسواں مرتبہ ایسا ہوگا کہ آدمی اپنی چلانا چاہتا ہے لیکن اس کی نہیں چل پاتی, اپنی ذات پر نہیں چل پاتی. दूसरों पर तो बहुत दूर की बात है, आदमी की अपनी जात पर नहीं चलती। हाँ, अपनी जात को वो हेल्थी बनाना चाहता है लेकिन नहीं चलती, अपनी जात को बीमारी से बचाना चाहता है लेकिन नहीं चलती, अपनी जात को सुकून वाली बनाना चाहता है लेकिन उसकी नहीं चलती। अपनी जात में पता नहीं वो क्या क्या करना चाहता है, लेकिन क्या जो चाहता है वो हो जाता है, कि उसका अपनी जात पर भी नहीं चलती, उसकी जात पर नहीं चलती, अपने बच्चों पर नहीं चलती, बीवी पर नहीं चलती। हम में से हर आदमी अपने बीवी को पता नहीं क्या क्या बनाना चाहता है, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। बीवी हमको पता नहीं क्या क्या बनाना चाहती है, नहीं होता। हमारे शौहर ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए तो क्या हो जाते हैं? अरे बोलो तो खरे। हाँ, इसका मतलब हमारी ना अपने ऊपर चलती है ना और किसी पर चलती है। तो इन सब पर किसकी चलती है? कि जिसने उनको पैदा किया उसकी चलती है। सबके दिल अल्लाह की उंगलियों के बीच में है, अल्लाह जैसे चाहे ऐसे उनको फिरा देते हैं। सबके दिल अल्लाह के हाथ में है, जिस अल्लाह ने उनको पैदा किया उसी अल्लाह के हाथ में उनके दिल है। किताबों में आता है कि जब अल्लाह की धरती पर रहने वाला उस रब को राजी करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जिब्रील मैं इससे खुश हूं, तुम भी इनसे खुश हो जाओ, और आसमान के सारे फरिश्तों से कहो वो भी इनसे खुश हो जाएं। फिर अल्लाह पाक जमीन वालों में ऐलान करवाते हैं कि जमीन वालों तुम भी इनसे खुश हो जाओ, फिर एक एक के दिल में इनकी मोहब्बत आ जाती है। यो ताउल अहमुल कबूल, कैसे लोगों के लिए मोहब्बत कूट कूट कर भर दी जाती है। आसमान वाले भी उनसे मोहब्बत करते हैं, जमीन वाले भी इनसे मोहब्बत करते हैं, जानवर भी मोहब्बत करते हैं। जितने सहाबा के वाकया है ना, जानवरों ने ये किया न फलन, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। और जब अल्लाह का ये बंदा अल्लाह को नाराज करता है तो किताबों में आता है कि आसमान पर से ऐसे ही फैसले उतरते हैं। अल्लाह पाक जो इस्लाम से फरमाते हैं कि हम इनसे नाराज हैं, तुम भी नाराज हो जाओ, और आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी नाराज हो जाए, वो भी नाराज हो जाते हैं। फिर जमीन वालों से कहो कि वो भी नाराज हो जाए, फिर उसके नाराजगी की शक्लें दुनिया में जाहिर होती है। सगा भाई फ्री हो जाता है। सगा भाई क्या हो जाता है बोलो तो खरे? भाई। कोर्ट में जाकर देखो कि अक्सर जितने केस हैं भाई बहनों की, ये पार्कों के झगड़ों के केस कम है। कोर्ट, हमारे एक दोस्त वकील है, मैंने उनसे पूछा कि आजकल कोर्ट में कौन से केसेस है? दो ही केस है, भाई बहनों के मीरास के हैं और मियां बीवी के झगड़ों के। हाँ, पार्कों के साथ झगड़ों के केस लोगों के बहुत कम है। क्या फला मोहल्ले वाले के साथ हुआ था, बाजार वाले के साथ हुआ था, केस हो गया। सगे भाई बहनों के ही मसले ज्यादा है। क्या ये दो भाई बहन लड़ने के लिए पैदा हुए थे? एक थाली में खाना खाया है, एक माँ की गोद में खेले हैं, एक माँ के सीने से दूध पिया है, और अब एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। न गमी में शरीक है न खुशी में शरीक है। क्या हुआ का दिल फटा हुआ है। दिल क्या हो गया? दिल फट गया। ऐसा दिल फटा कि सगा भाई भाई से कहता है मेरे जनाजे में मत आना। भतीजों को कहकर मरता है कि इसने ऐसा किया ऐसा किया। हाँ, सगी बहन के वहां जाने को तैयार नहीं है। साल हर साल हो गए उससे रिश्ता तोड़ दिया है। क्या रिश्ता तोड़ने के लिए था? क्या दिल फट गए? क्या दिल फटे नहीं है, आसमानों से दिल फाड़े जाते हैं। हालांकि रिश्तेदार और ये सब एक दूसरे के ताउन के लिए होते हैं। सगा भाई एक दूसरे का मजबूत करने के लिए होता है। भाई आ गया, मजबूती आ जाएगी। हॉस्पिटल में जरूरत है, भाई आ गया। शादी में जरूरत है, भाई आ गया। रिश्ते में जरूरत है, भाई आ गया। घर बनाने में जरूरत थी, भाई आ गया। भाई तो मदद के लिए। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को किया। फिरौन के पास जब जाना था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रजूआत की कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ मेरे भाई को कर दो ना। तो कहा ठीक है, तुम्हारे भाई को कर देंगे। और भाई को साथ करके क्या करेंगे? कहा तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे। क्या करेंगे? सनशुद्ध आदूदक अभी अखीक, कि हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ करके तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे। सनशुद्ध आदूदक अभी अखीक, कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ करके तुम्हें ताकत दे देंगे। तो भाई तो ताकत पहुंचाने के लिए था, अब भाई ताकत उखाड़ने के लिए हो गया। हाँ, ये भाई नहीं हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से उसको हमारा दुश्मन बनाया गया है। दिलों में मोहब्बत और दुश्मनी आसमानों से आती है। कोई पुड़िया नहीं है, हकीम साहब के वहां मिलते हो तो पिला दो, तो कोई पड़ी की नहीं मिलती उसकी मोहब्बत की, कि अल्लाह की तरफ से डाली जाती है। छोकरों में मोहब्बत अल्लाह की तरफ से डाली जाती है, बीवी में मोहब्बत अल्लाह की तरफ से डाली जाती है। हाँ, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि बीवी को हमने तुम्हारे सुकून का जरिया बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ये सुकून का जरिया है। और अगर वो दर्द सर बन जाए, दूसरे जैसी कोई दर्द सर नहीं फिर। ये सारी चीजों का ध्यान करना है, ये मुबारक मेहनत के रास्ते से ये बातें समझाई जा रही है, क्योंकि हम माहौल में रहते रहते इन सब चीजों को भूल जाते हैं। दुनिया में सब लोग ये बोलते हैं, ऐसा हमारे पास आ जाए तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, होता है लोगों के नारे। हाँ, तो चीजों के आने से लोगों की चॉइस बदल जाती है। पैसे आए तो घर की चॉइस बदल जाए, पैसे आए तो लड़की के रिश्ते की चॉइस बदल जाए, सवारियों की चॉइस बदल जाए, होता है इन सब चीजें। क्या भाई, पैसों पर ये सब जुड़ा हुआ होता है। पैसे आए तो ऐसे मोहल्ले में रहने जाएंगे, पैसे आएंगे तो छोकरे की शादी ऐसी करेंगे, पैसे आएंगे तो छोकरे का रिश्ता ऐसे छोकरे से करेंगे, पैसे आएंगे तो बढ़तर छोकरों को भरने के लिए ऐसे स्कूल में भेजेंगे। तो ये सब चॉइस है कि ये कौन सी चॉइस हो गई कि जो समाज और माहौल की होती है वो है। ईमान वाला क्या करेगा, क्या पैसे हो या ना हो ये सोचेगा कि घर का कौन सी जगह बनाना चाहिए, रिश्ता कैसे लड़के से करना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, फिर वो सोचेगा। सोच बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? सोच बदल जाएगी। हाँ, चीजों की वजह से जब आदमी में अल्लाह का ध्यान नहीं होता तो फिर उसकी सोच दुनिया के लोगों के मुकाबले के लिए होती है। वो ऐसा कर रहा है तो हमको फिर उससे दो बालिश आगे करना चाहिए, तो फिर उसमें वो अल्लाह को भूल जाता है कि भाई ये सारी शक्लें तो हम बना सकते हैं, लेकिन उस शक्लों में जिन चीजों के लिए शक्लें बनाई है उसकी तासीर तो अल्लाह डालेंगे। भाई बिस्तर खरीद सकते हैं, उंग तो अल्लाह देंगे, दवाई तो खरीद सकते हैं, तंदुरुस्ती तो अल्लाह देंगे, औलाद तो हम ले सकते हैं, औलाद को फरमा बरदार तो अल्लाह बना सके, अल्लाह ही बनाएंगे। हम बीवी ला सकते हैं, बीवी में सुकून तो अल्लाह डालेंगे। मैं भाई का भाई तो हो सकता हूँ, लेकिन भाई को मेरा मददगार तो अल्लाह बनाएंगे। मैं नौकर तो ला सकता हूँ, नौकर का अमानतदार तो अल्लाह बनाएंगे। वो तो नौकर चटाई लपेट देगा, कौन लपेट देगा चटाई? अरे बोलो, नौकर चटाई लपेट देगा। क्या नौकर विरोध में आ गया, उसी ने गल्ला खाली कर दिया, उसी ने हिसाब पूरा कर दिया। ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। ये आदमी की नजर उस वक्त जाती है जब वो ऐसी बातों को सुनता है, समझता है। तो ये बातें इसीलिए सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, ताकि इन इज्तिमात के जरिए से एक एक ईमान वाला जागरूक जीवन जीने वाला बने। कौन सा जीवन? जागरूक, सजाग जीवन जीने वाला बने। हाँ, अक्सर हमारा जहन ये होता है कि ये दीन की बातें जो हो रही है, दीन की मेहनतें जो हो रही है, वो तो क्या है, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम की बातें हो रही है, मरने के बाद क्या सब है? क्या मरने के बाद का तो है ही, इसके असरात दुनिया पर भी है। कहा है बोलो? दुनिया में भी है। अल्लाह के नबी सलाम ने हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला से बात फरमाई कि अबू सुफियान, ये बातें जो मैं जो तुमको समझा रहा हूं ये कहां असर करेगी? क्या सबसे पहले तुम्हारी दुनिया पर असर करेगी। जी तो कुम बे करामत दुनिया वल आखिरा, मैं जो बातें कह रहा हूं उसके असर दुनियावी जिंदगी पर होंगे। हाँ, अल्लाह पाक ने दीन के रास्ते से इंसानों को नफा पहुंचे वो बातें बयान की है। कौन सी बातें बयान की है? अल्लाह पाक ने हर वो चीज जो इंसान को नुकसान पहुंचाती हो उसको बेदीनी बना दिया। किसको बेदीनी बनाए? अरे बोलो तो खरे, हर वो चीज जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली हो उसको बेदीनी बनाया, और इंसान को नफा पहुंचने वाली हो उसको इतना तो जोर से बोलो सोने वाले उठ जाएं। इंसान को नफा पहुंचाने वाली चीज को अल्लाह ने क्या बनाया? दीन। और इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें क्या बना दी? बेदीनी। आप जितना भी सर्वे करोगे दीन में, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलो ये बात बताओ, ये मजमा यहां बैठा है, उनमें कोई ऐसा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए नाफरमान हो जाएं, मुझे तमाचा मारे? अरे बोलो। तो हर आदमी अपने बच्चों से क्या आशा करता है, कैसा होनी चाहिए? अरे बोलो, फरमा बरदार होनी चाहिए। तो अल्लाह ने बच्चों को फरमा बरदार रहने को दीन बना दिया, और मां बाप के सामने उफ करने को इतना करने को बेदी नहीं बना दिया। अगर अल्लाह पाक इसको बेदी नहीं ना बनाते तो बहुत सारे बच्चों को अपने मां बाप की बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती। जब अच्छी नहीं लगती तो उनका हिसाब किताब कर देते बच्चे, जैसे घरों में कर देते हैं, घर में होते हैं हिसाब किताब कर डालते हैं। और अब तो ऐसा एडवांस जीवन हो गया कि छोकरे मां बाप को छोड़कर चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं। ऐसा तो हमारे मुल्क में साथ में रहने का रिवाज है, वरना दूसरे मुल्कों में, अरब मुल्कों में भी और यूरोप के मुल्कों में भी शादी होती ही छोकरे मां बाप को छोड़कर गए, बल्कि शादी से पहले ही, बालिग होते पहले ही कि मां बाप को छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनको मिलने भी नहीं आते। हम लोग अभी गए थे तो वहां एक मुल्क में, तो वहां साल में एक मरतबा मदर डे मनाते हैं, मदर डे। तो मैं ताज्जुब करने लगा ये मदर डे क्या होता होगा, तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि मदर डे में बच्चे मां से अपनी मां से मिलने आते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे, तो रोज मिलने का होता है ना, वो शादी होने से पहले अपना सेटिंग कर देते हैं और मां को छोड़कर चले जाते हैं, फिर मां जाने न उनका काम जाने। तो साल में एक दिन नक्की किया उन्होंने कि ये दिन मां को मिलने आने का, तो उस दिन का नाम उन्होंने पूरे देश में क्या रखा, मदर डे, मां को छोकरा मिलने आएगा। मैंने कहा फिर मां क्या करती है, कि इतनी खुशी करती है कि मेरा बेटा मिलने आएगा। अब मां तो मां, उसको तो कितनी बेटे की मोहब्बत होती है, वो तो हम मां के दिल में मोहब्बत नहीं रखते, वरना मां कभी बेटे को भूल नहीं सकती। मां ते मां बाकी बधा वगड़ा ना वाह। पांचवें धोरण में थे तब ये पढ़ाया था साहिब ने, तुमने पढ़ा था ये चौपड़ी में, मां ते मां बाकी बधा वगड़ा ना वाह। क्या मतलब इसका, अल्लाह भणने नहीं गए थे तुम, गए थे तो नहीं भणा था ये, मां ते मां बाकी बधा वगड़ा ना वाह, वायरो आवीने जतो रे बाकी बधा वगड़ा ना वाह। बीवी को भी स्वार्थ होता है शोर से पूरा ना हो तो वो बीवी भी छोड़कर चली जाती है, छोकरे भी छोड़कर चले जाते हैं, मां कभी छोड़कर जाती है, अरे बोलो तो खरे। घर में आए तो बच्चे पूछेंगे अब्बू को मेरे लिए क्या लाए, बीवी भी कुछ आशा करेगी क्या लाए हो, और मां कहेंगी मेरा लाल आ गया। मां क्या कहेगी, वो आशा नहीं करेगी कि कुछ लाए कि नहीं लाए, मेरा लाल दिख रहा गया। मां हमेशा बहुत झूठ बोलती है, क्या करती है, झूठ बोलती है। कैसे झूठ बोलती है, घर में एक ही रोटी है, एक ही रोटी जितना आटा है, रोटी बनाएगी गरम गरम बच्चे को देगी, बच्चा कहेगा अम्मी आप भी खा लो, तो झूठ बोलेगी मुझे भूख नहीं, हालांकि भूखी है सुबह से, लेकिन बेटा खा ले इसके लिए झूठ बोलेगी। क्या बोलेगी, बेटा मुझे भूख नहीं है। क्या नहीं है, फीस भरने के लिए मजदूरी करेगी कि शोहर कमा कर नहीं ला रहा। हर एक अपनी माओ का अंदर देखना क्या क्या माँ ने स्ट्रगल किया जिंदगी में, अजीब अजीब माँ थककर इन बच्चों को परवान चढ़ाती है। हाँ, अपने शोहर का दिया हुआ खर्चा कर कसर करेगी और बच्चा बच्चा कर रखेगी और उसको खड़ा कर दिया अपने पैरों पर। उस मां को लोग भूल जाते हैं, उस मां को लोग भूल जाते हैं कि, तो वो दुनिया इतनी स्वार्थी है कि मां को भी भूल जाते हैं। तो उन्होंने मदर डे बनाया, तो वो मां इंतजार में होती है मेरा बेटा आएगा, तो वो खाना बनाती है। फिर मैंने पूछा और क्या करते हैं, कि बच्चे के मूड की बात है, मां के पास मिलने के लिए गया, अगर उसको अच्छा लगे आधा घंटा रुकना तो आधा घंटा रुकेगा, वरना 10 मिनट में चला जाएगा। वो मां यूं देखती ही रह जाएगी कि मेरा बेटा गया, अब आइंदा साल जिंदा रहे तो आएगा। मदर डे कब दीन जिंदगी में नहीं है तो आदमी मां को भी छोड़ देता है, और जब दीन जिंदगी में आता है तो अपनी मां तो मां परायों को भी संभाला देता है। अल्लाह ने दीन के रास्ते से हर उस चीज को दीन बनाया जिसमें इंसानों का नफा है, और हर उस चीज को बेदी नहीं बनाया जिसमें इंसानों का नुकसान है। मैंने अभी बताया कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान बने, तो फरमा बरदारी को अल्लाह ने दीन के रास्ते से हमको बताया, वरना अगर अल्लाह दीन के रास्ते से माँ बाप के साथ कैसे रहना ऐसा ना समझाते तो हम भी अपने माँ बाप से छूटे हो जाते और हम भी ऐसे ही व्यवहार करते जैसे आज लोग घड़ा घर में छोड़ाते हैं। माँ बाप को कहाँ छोड़ाते हैं, घड़ा घर में, क्या पोसा ही नहीं, खर्चा कहां से लाने का, घड़ा घर में छोड़ा है, कहां छोड़ा है। लेकिन ईमान वालों में आपको इसकी कर्जदारी नहीं मिलेगी कि कोई घड़ा घर में छोड़ाता हो। वो तो दूसरों को आसरा देते हैं, बेवाओं को, यतीमों को। मदीना मुनव्वरा में कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया तो उस बेवा के को लेने वाले हजारों मिल जाते थे कि भाई बेवा की कफालत करेंगे, यतीमों की कफालत करेंगे। किसी का बाप का इंतकाल हो गया तो उसके बच्चे की रखवाली करने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में ऐसे होंगे। या तो इतना अंतर होगा, या तो ये दो उंगलियों के बीच में जितना अंतर है इतना अंतर होगा। तो जब एक का इंतकाल होता था तो कितने ही लोग मिल जाते थे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। आज कोई लेता है किसी के बच्चे को? तो ये दीन बनाया अल्लाह ने, कि दीन के रास्ते से एक दूसरे की हमदर्दी पैदा कर दी। हाँ अच्छा, चलो बताओ, कोई ऐसा चाहता है कि मेरा पड़ोसी ऐसा लुच्चा लफंगा हो कि मैं कहीं इधर उधर जाऊं तो मेरे घर में हेरा फेरी करे? कोई ऐसा चाहेगा भाई? अरे भाई बोलो तो खरे, नहीं चाहेगा। तो ऐसी हरकत करने को बेदीनी बताया, और पड़ोसी को राहत पहुंचाने को दीन अल्लाह ने बनाया। किताब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बातों का मफहूम है। हुजूर एक मरतबा फरमाने लगे, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। ओ हो, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बगैर कसम के कोई बात कहें वही इतनी भारी है कि नबी ने फरमा दिया। फिर वो नबी तीन मरतबा कसम खाकर फरमाया, वो कितनी भारी बात होगी। तीन मरतबा कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबाई हिल गए, क्या बात होगी, तीन मरतबा कसम खाई। तो फिर पूछा, कील मनिया रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सलाम आप किसके लिए ऐसी भारी भारी बात कह रहे हैं, वो कौन आदमी है? तो क्या फरमाया, मन ला यअमनु जारहु बवाइकहु, कि वो आदमी मोमिन नहीं है कि जिससे उसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से मुतमईन न हो। तकलीफ पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, एक पड़ोसी को अगर उसके पड़ोसी से संतोष नहीं है, संतोष किस बात का, कि मेरा पड़ोसी मुझे कभी भी तकलीफ दे सकता है, ऐसा असंतोष है, ऐसा, अरे बोलो तो खरो, असंतोष है, उसको संतोष नहीं है कि मेरा पड़ोसी जोरदार है, मुझे कोई हर्ज नहीं है, ये संतोष हो गया। और असंतोष क्या है, यार मेरा पड़ोसी कभी भी 19-20 कर सकता है। अगर ऐसा असंतोष है तो हुजूर अलैहि सलाम उसके लिए फरमाते, वो मोमिन नहीं है जिससे उसका पड़ोसी संतोष बना रहे। अभी कुछ किया नहीं है उसने, उसको हैरान नहीं किया, अभी उससे क्या है खाली, उससे खाली क्या है पड़ोसी से, संतोष नहीं है, असंतोषी है। क्या है बोलो, असंतोष है। तो हुजूर फरमा रहे हैं वो मोमिन नहीं है। अब जिसकी जिंदगी में अगर ये आ गया तो फिर वो अपने पड़ोसी को हैरान कर सकता है? तो हमारा नफा यह था कि मेरा पड़ोसी अच्छा मिले, तो आज पड़ोसी को अच्छा बनने का रास्ता अल्लाह ने दीन के रास्ते से नक्की करवाया। हाँ जब ये चीज माशरे में वजूद में आएगी, अच्छा पड़ोसी का ऐसा हक है कि एक घर में पकाया हुआ सांप घर में फिरेगा? किताबों में आता है वो मोमिन नहीं कि जो पेट भरकर खाकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, का वो मोमिन नहीं है। फिर साहबा क्या करते थे, अच्छा मेरा पड़ोसी भूखा हो और मैं सोऊं तो मैं मोमिन नहीं? तो फिर एक घर का पकाया हुआ दूसरे को भेज रहा है, दूसरे वाला तीसरे को भेज रहा है, तीसरे को, का पड़ोसी के इतने हक समझाए कि हमको ऐसा लगता था उसको हमारे माल का भागीदार बना देंगे मीरास में। जब ये बातें जिंदा हो जाएगी माहौल में तो फिर एक दूसरे के मददगार पैदा हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मदर डे बनाना पड़ेगा, साल में एक बार मिलने आ रहे हैं, ऊपर अम्मी रह रही है, नीचे बेटा रह रहा है, लेकिन किसी की खैरियत पूछने को तैयार नहीं। अब ये बिल्डिंग जो बन रही है 10 माले की 15 माले की, तो वो फ्लोर वालों को पूछो वहां ऊपर के फ्लोर में कौन रहता है, खबर नहीं है। नीचे कौन रहता है, वो भी खबर नहीं। तुम्हारे फ्लोर में तुम्हारे आसपास कौन रहता है, वो भी खबर नहीं। और जब गरीबों के मोहल्ले थे तो पहले मोहल्ले में कोई सदमा हो तो पूरा मोहल्ला भेगा हो जाता था। अरे बोलो भाई, बात खरी के खोटी जी, ये नवे मॉडर्न जीवन ने सबका सत्यानाश कर दिया। क्यों? कि उसके बीच में से दीन निकल गया। दीन जो है इन सब चीजों को जोड़ने वाला, जैसे दो ईंटें होती है, उन दो ईंटों के बीच में माल भर दो तो ईंटें हिलेगी चौड़ जाएगी, लेकिन उन दो में से माल निकल जावे तो तुम थोड़े रिसाइले हो। बोल साहब ये मजमा तुम्हारा रिसाइला है, तो बोलता कहे को नहीं है, तुम्हारे को समझ नहीं पड़ती मैं जो कह रहा हूं, वो बोली समझ में नहीं आती है भाई, आती है। तो मैं पूछता हूँ तो उसको जवाब तो देते नहीं हो भाई, है क्या भाई? दो ईंटों के बीच में हिलती हो तो आपको क्या भरना पड़ेगा? और माल भरो तो ईंटें हिलना। तो ये पूरी समाज और सोसाइटी को जो हिल रही है उसमें दीन का माल भरने का है। बाप छोकरे में दीन का माल, मियां बीवी में माल, पड़ोसी पड़ोसी में माल भरना पड़ेगा। तो वो माशरे में जो हिल रहा है वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। भाई पड़ोसी पड़ोसी के साथ चेटिंग क्यों कर रहा है? तो वो जो पड़ोसी का माल भरने का था वो निकल गया बीच में से। क्या निकल गया? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में वो भर दिया तो ऐसा जोरदार, वरना कैसा माहौल था? लड़ाई लड़ते थे, वसीयत करके मरते थे, देखो इससे बदला लेना है, ऐसे लड़ते थे। लेकिन दीन का माल बीच में भर दिया तो अब एक घर का पकाया हुआ सात घरों में फिरने लगा। कितने घरों में? सात सात घरों में। हमारे जूनी प्रथा में था एक दूसरे के साथ रवादारी, हमदर्दी। एक छेड़े पर किसी को कुछ हुआ तो उस छेड़े वाला भी आ जाता था। अब नया मॉडर्न जीवन ऐसा हो गया कि एक फ्लोर पर पांच फ्लैट है, लेकिन उस फ्लैट में कौन है, इस फ्लैट में कौन है, कोई मिलता भी नहीं है, किसी को खबर भी नहीं होती कि ऐसा होता है। नहीं होता। हाँ, हम लोग अभी एक जगह पर थे, जहां अभी हम लोग एक सफर में थे, तो वहां जिस मस्जिद में थे वो बांग्लादेश वालों की मस्जिद थी, बंगालियों की। तो वहां एक आदमी हमारे खिदमत में थे, तो मैंने कहा तुम क्या काम करते हो? कि मैं मुर्दों को गुस्ल देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा बड़ा काम आप तो कर रहे हैं, अल्लाह बहुत उस पर सवाब अल्लाह ने रखा है। तो मैंने कहा क्या हालात है? तो अभी हमारे इस मोहल्ले में एक औरत का इंतकाल हो गया, हमने उसके गुस्ल का इंतजाम किया। ये न्यूयॉर्क में मैं कह रहा हूँ। तो उसके गुस्ल का इंतजाम हमने किया, तो उसका बेटा यहीं रहता है। तो उसके बेटे को हमने खबर की, तो उसने कहने लगा मेरा बैग का अकाउंट देता हूँ, अच्छे वाला कफन खरीदना मेरी अम्मी के लिए। कौन से वाला? और वहां कबर खरीद कर लेनी पड़ती है, कम से कम कबर $5,000 की, छोटे हल्की में हल्की कबर कितने $1,000 की, और वो $10,000-15,000 तक की होती है। तो कहने लगे जरा कबर अच्छे एरिया में खरीदना, बाकी मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बिजी हूँ। वो मुसलमान का बेटा ऐसा कह रहा था कि माँ क्या चीज है, वो समझाया नहीं गया। डॉलर समझाए गए तो डॉलर समझ में आ गए, माँ समझ में नहीं आई। क्योंकि बीच में से ये चीजें निकल जाएगी फिर ऐसा होगा। उस बंगाली को समझ में आ गया कि बीमार को इयादत करना कितनी बड़ी बात है, और उसके अलावा बीमार की इयादत क्या चीज होती है, और उसको गुस्ल कर देना क्या चीज होती है, उसको कफन देना क्या चीज होती है। तो फिर वो पराया है लेकिन वो सब करेगा, और सगे छोकरे को समझ में नहीं आएगा वो नहीं करेगा। ये दीन भर दिया जाएगा तो माशरा पाकिजा बन जाएगा। मियां बीवी में भर दिया जाएगा तो मियां बीवी से एक दूसरे को राहत की शक्लें पैदा हो जाएगी, वरना दूसरे दोनों एक दूसरे को स्वार्थ से देखेंगे। अल्लाह के नबी सलाम के जमाने में ये चीज दी गई हर एक को। तो अल्लाह के नबी सलाम ने यह फरमाया कि मैं जो बातें कह रहा हूं अगर तुम इसको समझ लोगे तो आखिरत की नंबर दो की बात है, सबसे पहले इसके असर तुम पढ़ोगे, दुनिया में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? दुनिया में। कि सुकून का जीवन मिलेगा, सुकून का मजे का जीवन। छोकरे बाबा को राहत पहुंचाने की फिक्र करेंगे, मेरे बाप को कैसे राहत पहुंचे मुझसे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब चलते थे तो उनके बेटे कभी आगे चले कभी पीछे चले, तो किसी ने कहा क्यों तुम ऐसा करते हो? कहा मेरे अब्बा के कुछ लोग दुश्मन हो गए हैं, तो मैं आगे कभी इसलिए हो जाता हूँ चलते चलते कि मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे अब्बा पर आगे से कोई हमला न करे, तो वो हमला मेरे पर होना चाहिए, मेरे बाप पर नहीं होना चाहिए। कभी मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई हमला करेगा तो मैं पीछे हो जाता हूँ, ताकि अगर हमला होता है तो मेरे पर हो, मेरे अब्बा पर न हो। वो है कि जो अपनी जान लगा दे, जब अब्बा की अजमत दिल में आती है तो ये भी हो सकता है, और अगर ये ना हो तो फिर बेटा बाप की जान ले लेगा। आज अखबार पढ़ो आप, कितने लोगों के वाकई पढ़ोगे। ये तो अल्लाह का एहसान है कि ईमान वालों में ये चीजें समझाई गई है, तो इससे बचा हुआ है माशरा। वरना जिन माशरों में ये बातें नहीं समझाई गई वहां छोकरे माँ को भी मार देते हैं। पेपर में नहीं पढ़ते वहां कि माँ को मार दिया, भाई को मार दिया, बाप को मार दिया। तो जब माशरे में ये बातें नहीं पैदा की जाएगी तो ऐसा होगा, बदअमनी पैदा होगी। मियां बीवी का सुकून इसी जिंदगी। अल्लाह के नबी सलाम के जमाने में एक औरत थी, तो उसके एक शौहर थे, तो शौहर मजदूरी करते थे। मैं बता रहा था कि कैसा पाकिजा माशरा होता है जब ये दीन बीच में आ जाता है। तो शौहर मजदूरी करता था, तो एक मरतबा घर में जो बच्चा था ना वो बीमार था, और शौहर रोजे से था। वो मजदूरी करने गया, अल्लाह की शान बेटे का इंतकाल हो गया, बच्चा जो बीमार था वो मर गया। अब बीवी टेंशन में आ गई। क्या टेंशन में आई? कि अल्लाह की जो मर्जी थी वो बच्चे के साथ तो हुई, लेकिन मेरा शौहर मजदूरी करने गया है और मेरा शौहर जब आएगा मजदूरी करके थकार कर चूर होकर आएगा और वो रोजे से हैं, जब वो आएगा तो मुझे क्या पूछेगा, किसका हाल पूछेगा? अरे बोलो तो खरे, बच्चे का। और बच्चा क्या हुआ? इंतकाल हो गया। अगर मैं उसको ये बात कहूंगी कि बेटा मर गया तो शौहर खुश होगा कि दुखी होगा? क्या दुखी होगा, एक तो वो मजदूरी करने गया है, मजदूरी करके थक के आया है, फिर उसके बाद रोजे से है, फिर बेटे का सदमा, तो मैं उसको कैसे राहत पहुंचाऊं? क्योंकि औरत के ऊपर अपने शौहर का सबसे बड़ा हक है उसको राहत पहुंचाए, उसको दुखी ना करे। अल्लाह के नबी सल्लम की बात का मफहूम है कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करना जायज होता है नहीं होता तो औरत को हुक्म करते कि वो किसको सजदा करे? अरे बोलो तो खरे, शौहर को। ये बड़ी चीज है। एक लड़की का निकाह हो रहा था, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरा निकाह हो रहा है, मुझे मेरे निकाह का दीन सिखाओ। आज तो दुल्हन दूल्हे कोई सीखते नहीं है दीन, सीखते हैं ना? ये सब 50-50 के साल के 15 साल के जूने जूने दूल्हे बैठे हैं, अगर उनको पूछे कि निकाह के दिन सीखने गए थे निकाह का दिन, तो निकाह का दिन लोग सीखते नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया, तेरे शोहर का दीन तुझ पर यह है कि तुझ तेरे शोहर को इतनी राहत पहुंचाए, अगर उसके जिस्म में से खून निकले, पीप निकले, फोड़ा हो जाए और खून और पीप निकले और उसको तो अपनी जबान से साफ करे, तो भी तूने अपने शोहर का हक अदा नहीं किया। अब जिस औरत को ऐसा बात समझाई जाए, वो औरत चलते चलते डगले में पगले दुखी करेगी? अरे बोलो तो खरे, दुखी करेगी? नहीं करेगी। तो हुजूर अली सलाम ने इस औरत को ये समझाया। तो अब ये ऐसी औरतें सोच रही है कि मैं अपने शौहर को राहत कैसे पहुंचाऊं, ऐसा सोच रही है। तो उसने क्या किया, बच्चे का गुसल, बच्चे को गुसल दिया। अब हमको तो गुसल देना भी नहीं आता, अपने मुर्दों को देना आता है? अपने मुर्दों को देना आता है गुसल? अब्बा को, भाई को, दूसरों से दिलवाते हैं, हालांकि हमको देना चाहिए गुसल, हमको देना चाहिए। ये आखिरी अब जिस्म की खिदमत। हमारे मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरी अम्मी ने बुलाकर कहा, बेटा अपने अब्बा को गुसल खुद देना, गुसल कफन खुद पहनाना, अब अपने बाप के जिस्म की खिदमत जिंदगी में कभी नहीं कर सकोगे। क्या कहा? क्या कहा कि तुम अपने अब्बा का इंतकाल हुआ है और अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा अपने अब्बा को गुसल खुद देना, कफन खुद पहनाना, कब्र में खुद उतारना, ये तुम अपनी जिंदगी की आखिरी खिदमत कर लो, तुम फिर अब जिंदगी में अपने बाप की खिदमत जिस्म की कभी नहीं कर सकोगे। औरत कितनी टेंशन में होती है शोहर मर जावे तो। शोहर तो उसका छत होता है कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह का फजल, किसी ना किसी थोड़ी बहुत दीनदारी है तो इतनी समझ आ गई उनके अंदर, तो उनको उन्होंने हमको बुलाकर ये नसीहत की, इंतकाल हो गया है और ये नसीहत की, तो अल्लाह ने तौफीक दी, फिर वो हमने किया। तो हमको तो गुसल देने भी नहीं आते, हालांकि गुसल हमको देना चाहिए, कफन पहनाना चाहिए, नमाज पढ़ा सकते हैं तो अपने मुर्दों की नमाज पढ़ानी चाहिए। तो खैर वो औरत ने गुसल दिया मुर्दे को, बच्चे को कफन पहनाया और तैयार कर दिया। जब शोहर आए तो शोहर के आने के बाद शोहर ने पहला सवाल क्या पूछा? जी जी, बच्चे का हाल पूछा। तो आप बोलते क्यों नहीं हो? हाँ भाई, बच्चे का हाल पूछा। जब बच्चे का हाल पूछा तो औरत क्या कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा राहत में है। अब छोटा बच्चा जन्नत में है, उससे बड़ी क्या राहत होगी? तो कहा बच्चा राहत में है, तो शोहर क्या समझा तंदुरुस्ती में होगा। तो शांति से उसने रोजा भी इफ्तार कर लिया और नमाज पढ़ने भी चला गया ईशा की। नमाज पढ़कर आया, वो औरत क्या दुल्हन की तरह घर में रही। ऐसा नहीं कि घर में बच्चा मर गया है और मातम है ये वो सब, कोई ऐसा नहीं। अपना ऐसा माहौल घर का बनाया कि उसको पता ना चले कि हमारे घर में ये हुआ है। बीवी इस तरह बन संवर कर तैयार हो गई कि शोहर ने उसके साथ रात गुजारी, अपनी जरूरत पूरी की। जब सुबह हुई वो नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो अपने शोहर से कहने लगी कि अच्छा ये बताओ कि अगर कोई आदमी किसी के पास कोई अमानत रखे और लेने आए तो क्या करनी चाहिए? जी दे देनी चाहिए, और कोई रोक ले तो? जी बुरी बात है, तो रोक ले तो बुरी बात है। तो औरत कहने लगी कि मसला पहले पूछा शोहर से, फिर कहा हमको अल्लाह ने एक छोकरा अमानत दिया था, अल्लाह ने लेने भेजा तो हमने दे दिया। कहा क्या बात करते हो? कहा जी हाँ, उसका इंतकाल हो गया। कब से? कहा कल से। कहा तूने बताया भी नहीं? کہ آپ مزدوری کرنے گئے تھے، آپ روزے سے تھے، اگر آپ کو میں بتا دیتی تو آپ کو صدمہ ہوتا، تو آپ کا حل بے حل ہو جاتا، اس لیے نہیں بتایا. تو وہ صدمہ تو بھول گئے بچے کا، بیوی کا اتنا اچھا رویہ ان کو ایسا یاد آ گیا کہ فجر میں اس جنازے کو لے کر گئے مسجد میں، اور حضور سے فرمایا بیٹے کی نماز جنازہ پڑھ دیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگے میری بیوی نے ایسا کیا، میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا ورتن کیا، خوش ہو کر میں نے اس کے ساتھ رات گزاری، اپنی ضرورت پوری کی ہے، پھر بھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا. تو پھر حضور نے فرمایا اللہ آج کی رات میں تمہاری برکت دے، یہ دعا دی. علماء فرماتے ہیں ان سے ایسے بچے پیدا ہوئے جو سب دین کی خدمت کرنے والے بنے. ایک کیا بچہ گیا، کتنے بچے اللہ نے دے دیے، اور سب دین کی خدمت کرنے والے. یہ سارا کا سارا کب پیدا ہو سکتا ہے؟ جب بیوی میں کیسا ہو، بیوی کو روز مول میں لے کر جاؤ، پکنک پوائنٹ پر لے کر جاؤ، اور یہاں اور وہاں، اور پھر یہ کہو کہ یہ رابعہ بصریہ ہو جائے، تو ہو جائے گی رابعہ بصریہ. کہ یہ چیز ہے کہ یہ دین کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب یہ جتنا بھی معاشرہ ہے اس میں اگر دین بھر دیا جائے گا تو ایک دوسرے سے راحت کی شکلیں پیدا ہو جائے گی. یہ فرمائیں جی تو کم بے کرامت دنیا والا آخرا، کہ اے ابو سفیان میں جو باتیں لے کر آیا ہوں وہ باتیں وہ ہیں کہ اگر اس کو تم سیکھ لو گے تو سب سے پہلے تم اس کے جو پڑھے پڑھیں گے وہ دنیاوی زندگی پر. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا؟ مرنے کے بعد کے لیے جنت اور جہنم وہ تو ہے، وہ تو اصل زندگی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے اس کے اثرات جو پڑتے ہیں وہ دنیاوی زندگی پر. اگر بیٹوں میں آ گیا تو بیٹے باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے حضرت علی کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے تو نیوالا نہیں اٹھاتے تھے، تو ان سے پوچھا کیوں؟ تو بوٹی نہیں اٹھا رہے، تو یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میرے ابا کو وہ نیوالا اٹھانا ہو، اس ذہن سے میں نہیں اٹھا رہا ہوں. او ہو 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 ہو، کتنا بڑا ذہن، ابا کے ساتھ کھانے بیٹھے ہیں، گوشت کی بوٹی اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو نیوالا میں اٹھا رہا ہوں میرے ابا کو وہ لینا ہو، اس خوف سے میں نہیں اٹھا رہا ہوں، شاید ابا کو پسند ہو اور وہ میں اٹھا لوں. کتنا لحاظ اپنے ابا کا، کہ یہ وہی بچہ کر سکتا ہے جس کے زندگی میں باپ کیا ہے وہ سمجھایا گیا ہو، ماں کیا ہے وہ سمجھایا گیا ہو، اور پڑوسی کیا ہے وہ سمجھایا گیا ہو، تو پھر پڑوسیوں کو بھیجا جائے گا، ورنہ سگا بھائی بھائی کے وہاں ہیرا پھیری کر ڈالے گا. کیا کر ڈالے گا بولو؟ سگا بھائی. آج کل سگے بھائی بھائی کے ساتھ ہی چیٹنگ کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، آخرت کو بھول گئے وہ لوگ کہ آخرت میں اس کا کتنا سخت انجام ہوگا. چھوٹی سی دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے سبند توڑ ڈالتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے دو چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، کتنی چیزیں بولو؟
دو.
ارے بولو تو کھڑے،
دو
چیزیں ہیں. کہاں ہوگی؟
عرش کے نیچے.
ایک اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ جس نے میرا حق ادا کیا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے میرا حق ادا نہیں کیا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. ایک قرآن. دوسرا پیٹ کے رشتے داری. کون سے رشتے داری؟ صلۃ الرحم، پیٹ کے رشتے داری، وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، جو اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑ دیا اس کو اپنے تو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے کاٹ دیا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. ہم چھوٹی چھوٹی دنیا کے لیے جو ان رشتوں کو توڑے ہوئے ہیں، سگی ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، سگے بھائی کا رشتہ. ہاں ہاں، ہمارے ماں باپ ہم کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. وہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے اپنی زبان ان ماں باپ کے سامنے تیز نہ چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. جس ماں نے بولنا سکھایا وہ ماں اتنی ڈری ہوئی ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کچھ کہہ نہیں سکتی. حالانکہ ماں کتنا بڑا سہارا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کے استاد نے ان کو خط لکھا، اور یہ لکھا کہ بیٹا اب قدم کم چون چون کر رکھنا، تمہارا وہ سہارا چلا گیا جس کی برکت سے تم پر آنے والی آفتیں ٹال دی جاتی تھی. ماں کی دعاؤں کی برکت سے آفتیں ٹل جاتی ہے، وہ سہارا کھو دیا. ہاں، باپ کا سہارا، ماں کا سہارا. لوگ ماں کے ساتھ بولا کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں اور وٹ پاڑتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. ارے جیون بھر تیرے ساتھ کیا کیا وہ تو سب بھول گیا. یہ سگے بھائی، سگی بہنیں، اکثر جتنے کورٹ میں کیسز ہیں وہ اسی کے ہیں، سگے بھائی بہنوں کے ہی ہیں، کہ یہ ایک دوسرے کے رشتوں کو سمجھا نہیں گیا. کیا نہیں کیا گیا؟ ایک دوسروں کو رشتہ. یہ بے دینی کی وجہ سے تو معاشرے میں تنگی آ گئی، جیون میں تنگی آ گئی. نہ دکھ کا کوئی بھاگیدار رہا، نہ سکھ کا کوئی بھاگیدار، سب سوارتھی ہو گئے. جب تک جیب گرم ہے تب تک سب ساتھ میں، ٹھنڈا ہو گیا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ سوارتھی، سوارتھ والے رشتے ہو گئے.
تو یہ دین کی محنت کے ذریعے سے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں یہ بلا کر چلے میں بھیجیں گے, چار مہینے بھیجیں گے, تو یہ چلے چار مہینے میں بھیج کر ان کو کیا ملے گا؟ یہ چلے اور چار مہینے میں بھیج کر 40 دن چار مہینوں میں یہ اس کی وچار دھارا ٹھیک کرنی ہے, اس کی سوچ ٹھیک کرنی ہے, اس کے جذبات ٹھیک کرنی ہے, اس کی فکرہ ٹھیک کرنی ہے, اس کا جیون جینے کے طریقے ٹھیک کرنے ہیں, اس کی وچار دھارا ٹھیک کرنی ہے. ابھی تو یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہے, یہ چیزیں ابھی ٹھیک, یہ اپنے معاشرے کے اور اپنے ماحول کا تابع ہو گیا ہے. ہاں ماحول میں جیسے 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 سنگ ملے ہیں ایسے رنگ, جیسا سنگ ویسا رنگ, جیسے سنگ ملیں گے ویسے رنگ. ہاں اس کو بہت محلے کے ٹپوری, راستے کے ٹپوری, پتہ نہیں کیسے کیسے سو سنگ ملا ہے, تو ایسا ہی ہو گیا ہے. جب یہ اس مبارک ماحول میں جائے گا نا تو اچھا ماحول. اب دیکھو نا محلے کا ٹپوری قسم کا چھوکرا ہوتا ہے اور وہ جماعت میں چار مہینے کے لیے بیگ لے کر مسجد میں آ گیا, تو جب تک نہیں آیا تھا پورا محلہ اس کو کیا کہتا ہے, جو ٹپوری ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے, حضرت دعا کرنا اللہ آپ کو خوش رکھے, روز اس کے پاس دعا کے لیے نہیں جاتے. ارے بولو تو کھڑے, جو ٹپوری ہوتا ہے جیب کترو اور خصہ کترو اور چور اور ایسا, تو محلے میں سے جب نکلتا ہے تو کتنے لوگ اس کو دعا کی درخواست کے لیے راستے میں کھڑے رہتے ہیں جی؟ ارے بولو تو کھڑے بھائی, کوئی نہیں جاتا. اچھا بتاؤ جب وہ چار مہینے کی بیگ لے کر مسجد میں آ جائے تو, اگر مسجد میں وہ چار مہینے کی بیگ لے کر آ جائے تو پھر وہ نماز پڑھ کے لوگ نکلیں گے, خبر پڑے کہ یہ محلے کا وہ ٹپوری ہے اور چار مہینے کی بیگ لے کر جا رہا ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ تو اب کیا بدل گیا جی؟ کہ اب وہ ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک دم تو یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں آنند فنن ڈال دیتے ہیں. کیسے ڈال دیتے ہیں؟ آنند فنن محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں, اور اس کی طبیعت اللہ ایسے بدلتے ہیں کہ ایک دن نماز نہیں پڑھتا تھا وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, رات میں اٹھتا ہے اور پتہ نہیں ایک گھر میں کبھی پلیٹ نہیں دھوئی تھی, 15 آدمیوں کے برتن دھونے والا بن جاتا ہے. کہ یہ محنت ایسی ہے, یہ جو تبلیغ میں لے جانے کو کہتے ہیں نا, کہ اس کی وچار دھارا بدلے, اس کی سوچ بدلے, اس کی فکر بدلے, اس کے جذبات بدلے. تو اس لیے شیطان کے لیے سب سے بھاری جو چیزیں وہ یہ ہے, یہ جماعت میں نہیں جانا چاہیے. ہمارے بزرگ کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے, شیطان کو عداوت ہے. کیوں؟ یہ خود بھی سدھرے, یہ سدھرے گا اور بہت سو کو سدھر دے گا, بہت سو کو. آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جن کو ملو گے آپ تو پچھلی جیون میں اور ابھی میں, خود اپنا دیکھ لو نا, جب تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو ہم خود اج کیسے تھے؟ ہم سب کو جس نے سدھارا وہ کون تھا؟ جب تک ہم تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو ہم کیوے تھے, خود دیکھ لو. برابر ہے بھائی؟ اللہ بولو تو کھڑے. بعض لوگوں کو تو بعض لوگ کہتے ہیں ہاں تبلیغ میں نہ لگے ہوتے ہیں تو گھڑوں ماتھن دکھاؤ بنے لو ہوتا. بولا ایسا کہتے نہیں کہتے؟ اللہ صحابہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا پچھلا جیون یاد کرو تم کیسے تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان, تم تو دشمن بنے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو مارتے تھے. فالف بین قلوبکم, اپنا پچھلا جیون یاد کرو کہ جب تم نے یہ باتیں جو ہم نے تم کو کہی اس میں تم نہیں آئے تھے تو تم کیوے تھے. اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم, ہم نے تم کو بھائی بنا دیا, ورنہ تم تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے, ایسا کرتے تھے, ایسا کرتے تھے. ہم سب اپنا جیون دیکھو نا کہ کیسے تھے. یہ مبارک دین نے ہمیں ہمارے اندر سدھر پیدا کر دیا. یہ دین کی محنت اس کے لیے کہ آدمی کے اندر سدھر آتا ہے, فکرہ بدلتی ہے, سوچ بدلتی ہے. اس کو ہم اپنے ضرورت کی چیز سمجھیں, ہم اس کو ودھاوے کی نہ سمجھیں. یار وہ ٹھیک ہے موقع ملے چلا کر لینے کا, موقع ملے 3 دن چلے جانے کا. وہ ایسا ہوتا ہے نا ڈرائیور ہوتا ہے نا, تو ہمارے وہاں ڈرائیور یہ کہتا ہے ایک ذرا پھیرو ماری نہ وہ بمبئی نو پھیرو ماری نہ اوچھو, تو ایسا کہتے ہیں چلانو پھیرو ماری آؤں, چلانو پھیرو ماری آؤں. یہ پھیرا مارنے کی چیزیں نہیں ہے, یہ ذہن کے ساتھ اس کو دیکھنے کی چیز ہے کہ اتنی بڑی چیز, کہ کیونکہ ہر چیز محنت سے آتی ہے اور ہر چیز محنت سے بنتی ہے. اچھا دکان بنانے کے لیے ریموٹ کنٹرول کر دو تو دکان بن جاتی ہے؟ ارے بولو, یوں ریموٹ چلاؤ دکان بن گئی, یوں ریموٹ چلاؤ کھیتی اگ گئی, ایسا ہی ہوتا ہے کہ نا. دکان بنانے کی محنت, کھیتی اگانے کی محنت, घर बनाने की मेहनत, तो बनाने की मेहनत भी करनी पड़ती है, और बन जाए तो साचवने की मेहनत करने की कि खाली खुद सचवा जाएगी? अरे बोलो तो खरे, साचवने की भी मेहनत करनी पड़े, ऐसे दीन को भी बनाने की मेहनत करनी पड़ती है और दीन को साचवने की भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो तबलीग में ले जाने को कहते हैं कि हर साल चिल्ला लगाया करो तो चार्जिंग होता रहे, वरना डिस्चार्ज हो जाएगा फिर उसमें काम बात नहीं होगी। फोन में डिस्चार्ज होता है बात होती है क्या? बैटरी गई। ऐसे जितने ये अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छी कुटेव उसके अंदर आएगी, वो अल्लाह के डर की वजह से आएगी। किसकी वजह से बोलो? आदमी को जो भी अच्छे काम करवाता है वो अल्लाह का डर करवाता है, अल्लाह का डर। और अल्लाह का डर को पैदा करने वाली जो चीज है ना, वो ईमान है। क्या है बोलो? ईमान। तबलीग में जो बड़ी चीज बनती है वो ईमान बनता है। क्या बनता है? ईमान। माल ऐसा फरमाते थे, लोगों ने तबलीग का नाम तबलीग रखा, मैं रखता तो तहरीके ईमान रखता, ईमान को हरकत में लाने वाली चीज। और जब ईमान बनता है ना तो उसके जिस्म से अमल अच्छे बनते हैं। लुकमान हकीम ने नहीं कहा, अरे मेरे बेटे जिसका यकीन जितना मजबूत होगा उसके जिस्म से निकलने वाले अमल इतने ही मजबूत होंगे, और जिसका यकीन कमजोर होगा उसके जिस्म से निकलने वाले अमल, यकीन का मतलब अल्लाह पर विश्वास, अल्लाह की जो बातें हैं उसका यकीन कि मैं अगर तनहाई में भी बुराई करूंगा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इन चीजों का डर एक एक के अंदर पैदा करना। हजरत साहबा में ये डर इतना बड़ा बना हुआ था कि अगर कोई गुनाह हो जाए तो ऐसा समझते थे कि कोई पहाड़ हमारे सर पर आया है जो गिरेगा और हमें दबा देगा, ऐसा डर उनके ऊपर बैठा हुआ होता था। तो ये डर पैदा करना है, अल्लाह के रास्तों में जाते रहना, फिर वापस आने के बाद उसमें लगे रहना। उसमें लगे रहोगे तो तुम्हारा, तुम भी सचवाले रहोगे, छोकरे सचवाले रहेंगे, मोहल्ला सचवाला रहेगा। ये जबरदस्त मेहनत है, ये ऐसा नहीं है चल चलाओ, ये आमाल को करने की ताकत पैदा कर देगा। जैसे ये टपोरी किस्म का आदमी पहले दिन निकला पांच टाइम का नमाजी बन गया। आदमी के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, एक उसको अमल करने की ताकत शक्ति अंदर होनी चाहिए, शक्ति। जिस्म से आदमी अमल नहीं करता, अंदर की शक्ति से करता है। रात अंधेरी होती है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और बारिश बरसती है, और अंदर की शक्ति पावरफुल होती है तो बड़े मियां लकड़ी लेते हैं, कट 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 के मस्जिद चले जाते हैं। बोलो खरी बात खोटी बात? और दिन में छोकरा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठा है पर अंदर की शक्ति नहीं है, तो अजान होती है, वादड़ भी नहीं है, बिजली भी नहीं कड़कती, फिर भी वो छोकरा मस्जिद में नहीं जाता। जिस्म की शक्ति तो छोकरे की ज्यादा है बड़े मियां से, तो फिर वो क्यों नहीं गया? का जिस्म की शक्ति है, दिल की शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? दिल की शक्ति नहीं है, तो वो दिन में नहीं जाता। और बड़े मियां के दिल की शक्ति मजबूत है तो अंधेरे में भी जाते हैं। तो उस दिल की शक्ति ईमान है कि वो बने, तो वो बना, वो अल्लाह के रास्ते में जाकर बनाना और रोजाना उसको पानी पहुंचाना घर में रहकर। उसके लिए तालीम के हलकों में घर आकर बैठना, ईमान अमल के मुदाकरों को सुनना, तो एक तो ये शक्ति बनाना। दूसरी जो जरूरत की चीज है वो कौन सी पता है? दूसरा माहौल। क्या चीज? माहौल। माहौल से काम आसान हो जाता है। रमजान में 30 रोजे रखने आसान, बोलो खरी बात खोटी बात? लेकिन रमजान में कभी दो चार रोजे कजा हो जाए तो उसकी कजा आसान है कि अघरी पड़ती है? अल्लाह बोलो तो खरे भाई जी, रमजान में 30 रोजे अघरे नहीं पड़े और रमजान के बाद दो चार कजा हो गए थे वो इजी होते हैं कि अघरे पड़ते हैं? अघरे पड़ते हैं। रमजान में 20 रकाते हैं तरावी के आसान के मुश्किल? अल्लाह बोलो तो खरे। और रमजान की जब ईद रात होती है तो ईद के दिन, अल्लाह अभी तो रोजा छोड़ा है, चांद अभी देखा, उस दिन 17 रकात कितने पढ़ते हैं ईशा की? रोज 20 रकात पढ़ते हैं। और चांद रात के दिन ईशा की 17 रकात कितने लोग पढ़ते हैं? कि यार एक महीने से 20-20 रकातें पड़ी थी तो आज कम से कम ईशा की कितने पढ़ लूं? बोलो पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं। तो अब तक कैसे पढ़ते थे? का माहौल की वजह से। का माहौल भी हमारा दीनदारी वाला होना चाहिए जिससे काम करना आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है बोलो? काम करना आसान। इसलिए अपने आप को दीनी माहौल में रखें। देखो माहौल सब पर असर करता है। देखो अभी ठंडी है तो ठंडी खाली ईमानदार को लगती है कि खाली गरीब को लगती है?
सबको।
अल्लाह बोलो तो खरे। अच्छा पहलवान हो उसको, उसको भी लगती है। वो किसी को रियायत करती है कि ऐसा है ऐसा है, इसको नहीं लगना। वहां से टन लेकर निकल जाए, मोहल्ले में आ रही थी और आते आते ये तो पहलवान का घर है, उसके घर में नहीं घुसना, ऐसा कहती है। ये मौली साहब का मकान है वहां नहीं घुसना, ऐसा कहती है। ये अमीर साहब का मकान है वहां नहीं घुसना, ऐसा कहती है? नहीं कहती। कि ठंडी जैसे सब पर असर करती है, अच्छी ठंडक, अगर बदबू आ जाए, बदबू कि गटर मोहल्ले में उभरा गई, जानवर मरेला है उसकी बदबू आई, हवा के झोंके चलते हैं ना, तो उसमें बदबू आती है कभी कभी, तो मोहल्ले में घुस गई, तो मोहल्ले में घुसेगी तो बदबू किसके किसके घर में घुसेगी? चंद लोगों के या सबके? वो उसमें गांव के सरपंच का घर है तो अल्लाह बोलो तो खरे, गांव के सरपंच के घर में घुसती है? डरती नहीं है वो? हैं? कहा नहीं, वो किसी से नहीं डरती। पानी का गटर उभरा गई, उसमें बदबू आ रही है, तो अक्खे मोहल्ले में आएगी या चंद लोगों के मोहल्ले में? कहा कोई बचेगा नहीं। क्यों? कहा गंदा माहौल हो गया। तो गंदा माहौल जैसे किसी को बख्शता नहीं, ठंडी किसी को नहीं बख्शती, ऐसे जो चीज मोहल्ले में पैदा होगी उससे हम और बख्शे नहीं जाएंगे, वो हमारे और आप पर भी असर करेगा। इसलिए अपने इलाके का माहौल अच्छा बनाना। देखो काबा शरीफ है ना, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमने हिदायत का मरकज इसको बनाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदा, कि हमने बैतुल्लाह को हिदायत का मरकज बनाया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक लोग, कोई नबी नहीं आए, 600 साल गुजर गए। कितने साल बोलो? 600 साल। शैतान को शरारत सूझी, उसने क्या किया पता है? शैतान ने यह किया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 250 साल पहले जो लोग थे उन लोगों को कहा कि तुम्हारे वडील ऐसे थे, तुम्हारे वडील ऐसे थे, तुम तो उनको भूल गए, ये उनके फोटो थे, तो पहले फोटो बनवाए। क्या बनाए? फोटो, कि ताकि तुम अपने वडीलों को याद रखो, अच्छे वडील थे। फिर उन वडील उनका ये फोटो तो मैले हो जाएंगे, तो ऐसा करो पत्थर के बना लो उन फोटो, तो पत्थर के, तो एक पीढ़ी तो उसमें चली गई। जब दूसरी पीढ़ी आई ना, कई यही लोग हैं जो अच्छे थे, उनके वास्ते से तुम अपने रब से मांगो, यूं करके उसी की पूजा में लगा दिया। तो बुत परस्ती 250 साल पहले शुरू हुई, हमारे नबी की पैदाइश से कितने साल पहले? 250 साल। वो काबा में नहीं थी, कहां थी? काबा के बाहर थी, लेकिन धीमी गति से वो बुत बढ़ते 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 कहां दाखिल हो गए? काबे में। जब काबा जैसा काबा उसके अतराफ के गंदे माहौल से बच नहीं सका, तो मेरा और आपका घर बच जाएगा गंदे माहौल से? अपने यूं कहें कि ना अपने तो कंप्लीट अज है, मेरे घर में तो अपना सब सेट अज है। अल्लाह भाई काबा जैसा काबा नहीं बच सका तो तू कौन से खेत की मूली है? जब काबतुल्लाह जैसा का, तो जैसा अतराफ का माहौल होगा वो सबको डैमेज करता है। इसलिए अपनी मस्जिद का माहौल, अपने घर का माहौल, अपने फड़िये का माहौल वो दीन वाला बने, उसकी हमें फिक्र करनी। उसके लिए क्या करना? ये जो मकामी आमाल है ना, 2.5 घंटे लगाना, फिर गश्त के जरिए से लोगों के पास घर घर जाना, वो इसकी मेहनत है। दो काम उसमें होंगे, जब ये मुलाकातें होगी तो लोगों में दीनी जागृति बाकी रहेगी। कौन सी जागृति बोलो? दीनी जागृति, कि हम रोज जाकर ईमान आमाल की बात करेंगे, आखिरत की बात करेंगे, तो उसके अंदर रोज लोगों में जागृति आएगी। वरना लोगों में दूसरी जागृति आ जाती है, हाँ जो बातें कानों पर पड़ेगी वो बातें कानों अंदर अंदर जागृति आएगी। आदमी के अंदर जो बातें आती है वो देखने से और सुनने से आती है। किससे? कोई चीज देखी तो अच्छा ये ऐसी है, कोई सुनेगा अच्छा ये ऐसा है, एकदम माइंड चलना शुरू हो जाएगा, माइंड चलना। इसीलिए दुनिया के लोग जो है ना उस एडवर्टाइज सुनाते हैं ताकि लोगों के अंदर ये उतर जावे। क्या उतर जावे? होता है ना एडवर्टाइज में, दिखाते हैं और सुनाते हैं, दिखाते हैं और सुनाते हैं। बोलो दुनिया में यही होता है? कोई चीज की एडवर्टाइज करनी हो मार्केट में चलाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, दिखाते हैं और काय के लिए? अल्लाह बोल तो खरा, काय के लिए? अंदर उतारने के लिए। अंदर उतर जाओ इसके लिए चीजें दिखाते हैं। तो हम इन चीजों को सुने और देखें कि रोजाना अपने अपना माहौल ऐसा बनाओ। मस्जिद में रोज ईमान की बात 10-15 मिनट सुनो तालीम में, ताकि ये बातों की जागृति बाकी रहे। उसके साथ साथ अपने आप को मस्जिद वाले माहौल में रखो। अल्लाह भाई झाड़ की डाढ़खी होती है, डाढ़खी तुम क्या कहते हो उसको? डाली। वो जाड़ी हो के पतली हो, जाड़ से जोड़ा ही लिए तो लीली रहेगी कि सूख जाएगी?
लीली।
ये कहता है सूख जाएगी। अच्छा भाई, डाढ़खी डाली झाड़ से जोड़ाई ली रहे तो लीली रहे क्या सूखी हो जाए? लीली रहे। और कट जाए तो? अच्छा, इतनी जाड़ी डाढ़खी हो तो, इतनी जाड़ी डाढ़ी हो, वो तुमने वडला देखा है? वडला वो इतना पतला नहीं होता। हाँ, वडला कैसा होता है? इतना जाड़ा, यूं बाथ में लो, बाथ में भी ना, उसके डाढ़खे कैसे होते हैं? पतले पतले, जाड़े जाड़े। इतना जाड़ा डाढ़खा झाड़ से काट डालो तो कटने के बाद जमीन पर गिरेगा तो रोज लीला होता रहेगा कि सूखेगा?
सूखेगा।
अरे बोलो तो खरे, तो इस डाढ़खे का कसूर क्या हुआ? किससे कटा? जाड़ से कट गया। तो जाड़ से कटने से क्या नुकसान हुआ? क्या वहां से लीलोतरी मिलती रहती थी, वहां से उसको पानी मिलता था, वहीं से कट गया। कहां से कट गया? जहां से उसको पानी मिलता था वहीं से कट गया। अब वो कितना भी जाड़ा हो क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, वो कटे हुए डाढ़खे को कोई पड़ा हुआ हो और यूरिया खातर उस पर डाले लीला करने के लिए तो क्या होगा? अरे भाई बोलो तो खरे, कटे हुए डाढ़खे पर रोज यूरिया खातर डाले तो क्या होगा? अच्छा, कटे हुए डाले पर रोज एक टैंकर पानी डाल दे लीला करने के लिए तो क्या होगा? बजाय लीला होने की, ये सब डालने से सड़ेगा कि लीला होगा? उसका कसूर क्या हुआ? के झाड़ से कट गया। किताबों में आता है जितनी मोहल्ले में मस्जिदें हैं वो बैतुल्लाह की बेटियां हैं। क्या है बोलो? जितनी रहमतें बैतुल्लाह पर उतरती है वो रहमतें मुंतकिल होती हैं मस्जिदों में। एक आदमी का ताल्लुक मस्जिद से है तो वो रहमत किसके साथ जाएगी फिर? जिसका ताल्लुक मस्जिद से। और जो आदमी मस्जिद से कट गया अब क्या होगा उसका हाल? जो बैतुल्लाह से रहमत उस मस्जिद में आई थी वो मिलेगी उसको? अरे भाई बोलो तो खरे, तो अपने आप को मस्जिदों से जोड़े रखें। उसमें सबसे बड़ा अमल नमाज है। नमाज किससे हल में न छोड़े, मस्जिदें नमाज के लिए है, इबादत के लिए है। किताबों में आता है जो आदमी नमाज छोड़ दे ऐसा आदमी अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। हमारी नमाज न छूटे, किसी हल में हमारी नमाज न छूटे, किसी एक बच्चे की नमाज न छूटे। घर के में 10 मेंबर हैं, एक आदमी तो बुजुर्ग बन गया और दूसरे 9 मेंबर अल्लाह को नाराज करने वाली हरकतें करते हैं। फिर वो बुजुर्ग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तो हमारे घर में ये कर दे वो कर दे। एक आदमी तो अल्लाह की रहमत को खींचता है और 9 आदमी अल्लाह की रहमत को धक्का मारते हैं। तो भाई 9 की ताकत वधर हो जाएगी कि 1 की ताकत वधर हो जाएगी? अल्लाह बोलो तो खरे, 9 की। हम मस्जिदों से न कटे हैं, मस्जिद अल्लाह के घर हैं। मस्जिदों पर आने वालों का अल्लाह इकराम करते हैं। किताबों में आता है भाई तुम्हारे घर में कोई आवे तो तुम क्या करते हो? अल्लाह भाई बोलो तो खरे, तुम शायद नहीं करते होंगे इसलिए ऐसा बोलते हो, नहीं करते हो, चाय नहीं पिलाते। तो तुम्हारे घर में कोई आवे तुम इकराम करते हो। किताबों में आता है जो अल्लाह के घर में आता है उसका इकराम किया जाता है। कौन करेगा वो इकराम? अल्लाह। और अल्लाह बड़े हैं, जब अल्लाह इकराम करेंगे तो उसका इकराम भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए अल्लाह के घरों से हमारे रिश्ते कमजोर रहो, एक वक्त की भी हम गैर हाजिरी ना करें। किताबों में आता है फजर की नमाज में इजराइल अलैहिस्सलाम लोगों को देखते हैं, मुसल्लियों को, कौन कौन नमाज भी होते हैं। और फिर किताबों में आता है कि मौत के वक्त उनको कलमा तलकीन करते हैं। कितनी बड़ी बात है। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज अगर किसी की छूट गई फजर की नमाज, तो किताबों में आता है उसके हाथ में मुनाफिक का झंडा है, ईमान का झंडा नहीं है, कितने डरने के बाद। किताबों में आता है फजर और ईशा की नमाज मुनाफिक पर भारी है। जब नमाज पढ़ने का जीना चले तो फौरन सोचने का कि मेरे नबी ने फरमाया फजर और ईशा की नमाज मुनाफिक पर भारी है, मैं मुनाफिक हूं क्या? मैं नमाज नहीं पढ़ता। जो आदमी नमाज जानबूझकर छोड़ दे अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। अल्लाह को हमारे नमाज की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने नमाजें हमारी पहचान के लिए बनाई है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते। अल्लाह ने नमाजें हमें परखने के लिए दी है। मस्जिद से हमारा रिश्ता न टूटे ताकि अल्लाह की, मैंने कहा डाढ़खे से झाड़ से डाढ़खे को पानी पहुंचेगा, ऐसे मस्जिदों से हमें ताकत मिलेगी। किताबों में आता है जो मस्जिद में आता जाता रहे उसके ईमानदार होने की गवाही दो कि वो ईमान वाला है। कि ईमान वाला मस्जिद में ऐसा है जैसे मछली पानी में है, तो ये बड़ी बात है। اس لیے مسجدوں سے رشتے نہ اٹھتے، مسجد کے اعمال میں جڑے، نماز کی انتظار کے ساتھ پڑھیں، جلدی سے مسجد میں چلی جائیں، بھاگتے دوڑتے نہیں. ہاں اچھا، ایک بڑے آدمی سے تم کو ملنا ہو، بڑے آدمی سے، تو اس کے آنے سے پہلے آدمی انتظار کرتا ہے یا وہ آوے اور بلاوے تب جاتا ہے؟ ارے بولو تو کھڑے، آنے سے پہلے. تو سب سے بڑوں سب کا بڑا اللہ ہے، وہ بلاوے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد جانے کا. کہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ بلاوے اس سے پہلے چلے جائیں، نماز کے انتظار میں بیٹھیں، نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں پڑھیں، سیکھ کر نماز پڑھیں، کہ نماز مسجد اور جماعت میں بیٹھیں، مسجد کے تعلیم میں بیٹھیں. مسجد اور جماعت میں بیٹھو گے تو روزانہ دین کی باتوں کے چرچے ہوں گے، وہ چرچے ہمارے دل دماغ پر بیٹھ جائیں گے. ورنہ آدمی جیسے چرچے سنتا ہے نا ایسے وچار بنتے ہیں، جیسی باتیں سنتا ہے ایسا بن جاتا ہے وہ آدمی، سنتا ہے نا جو ایسا بن جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں پڑتی. کچھ ٹپوریا چور چھ چور، یہ سننے کا اثر کیسا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. تو ایک آدمی بکری کا بچہ لے کر آ رہا تھا، تو وہ ٹپوریوں کو یہ تھا کہ یار اسے بکری کا بچہ لے لینے کا ہے، پر لینے کا کیسے؟ تو انہوں نے تدبیر کیا کہ خبر ہے، ایک یہاں کھڑا ہو گیا، ایک وہاں کھڑا ہو گیا، ایک وہاں کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد جب وہ آیا نا بکری کا بچہ لے کر، تو پہلے چھوکرے نے کہا او حاجی صاحب، او حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایسا اس کو سنایا تو غصے ہو گیا، مجھے بکری کا کتے کا بچہ دکھتا ہے، وہ کون سا بچہ ہے؟ یہ بکری کا بچہ ہے. یوں کر کے ڈانٹ کے آگے نکل گیا. پھر تھوڑا آگے گئے، دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایک دم ہڑبڑا گئے، یار وہ بھی ایسا کہتا تھا، یہ بھی ایسا کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یوں دیکھا، نا یہ تو بکری کا بچہ ہے، کتے کا نہیں ہے. پھر تھوڑے آگے گئے، تیسرا کھڑا تھا، اس نے کہا حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک دم ہڑبڑا گئے، یار ایک کھوٹا ہو سکتا ہے، دو کھوٹے ہو سکتے ہیں، تین دن تھوڑی کھوٹے ہوں گے، میں کھوٹا ہوں. یوں کر کے ڈال دیا، چلے وہ ٹپوری اٹھا کر چلا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس کی ذہن کو کیسے بدلا انہوں نے؟ جی بار بار بات کو سنا سنا کر. جو آدمی باتیں جیسے سنتا ہے ایسا دھیمی گتی سے ہو جاتا ہے. کون سی گتی سے؟ اللہ بولو تو کھڑے. دھیمی گتی سے وہ جیسی باتیں سنے گا ایسا ہو جائے گا. اس لیے روزانہ ایمان کی باتیں سننا، آخرت کی باتیں سننا، ایک تو اپنی اپنی فکر، دوسرا اپنے گھر والوں کی فکر. کتابوں میں آتا ہے کہ تم بڑی اللہ نے تم کو بنایا ہے، تمہارے چھتر چھایا میں، تمہارے رحم و کرم میں، تمہارے گھر میں جتنے ہیں ان سب کے تم بڑی لو. تم سے ان کے ماتحتوں کا، تمہارے ماتحتوں کا اللہ سوال پوچھے گا، بیوی بچے جتنے ہیں ان کا. ہاں کتابوں میں آتا ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہماری اولاد یا تو ہمارے لیے جنت ہے یا ہمارے لیے جہنم. ہمارے چھوکروں کی کیرونی، ہمارے چھوکروں کی، اللہ بولو تو کرے. تم رسائلے ہو چاہیے بھی تم نے، تو کوئی بات نہیں، ابھی پی لینا، کیا مانگا ہے؟ رمضان میں 12 مہینے 12 گھنٹے روزہ بھوکے نہیں رہتے، کیا کہتے ہیں؟ پر تم بولو تو چھوڑو، یہ کہتے ہیں چھوڑے تو پیے نا، کھڑے آتی ہے. میں تو چھوڑنے کے لیے بلوا رہا ہوں کہ تم بولو تو چھوڑ دوں. اے بھائی بولو، کھوٹا کھڑا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ اس گندے ماحول میں بچوں کی کیرونی اگر ہمارے گھر میں نہیں ہوئی تو کہیں بھی نہیں ہو سکے گی. اور کیرونی کے لیے چوکسائی کے قدم اٹھانے ہیں اس زمانے میں، اس ماحول میں. وہ کیا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول دینداری والا بنانا، کیونکہ بچے اس گھر کے ماحول میں رہتے ہیں. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے مردوں کو حکم یہ ہے کہ تم اشراک کے علاوہ سارے نفل عمل گھر میں کرو تاکہ گھر میں عبادت کا، نفل نماز کا اچھا ماحول بنے. کتابوں میں آتا ہے ہر بچے کو اللہ مسلمان پیدا کرتے ہیں، پر ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. کیسے بنا دیتے ہیں؟ وہ ماں باپ کی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں چھوکرے کی، چھوکرے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے کس کو گمبھیرتا سے لیا، کس کو گمبھیرتا سے نہیں لیا، کس کو چیز کو بڑی سمجھی، کس کو چھوٹی سمجھی. تو وہ دیکھتا ہے، پھر وہ بھی اسی چیز کو بڑا بناتا ہے. اپنے گھر میں آج کل فون ہوتا ہے، امی روٹی بناتی ہے اور فون آ گیا، تو امی کیا کرتی ہے؟ گھنٹی بجنے دیتی ہے یا فون اٹھاتی ہے؟ ارے بولو تو کھڑے، فون اٹھاتی ہے. अब छोटा बच्चा देख रहा है ओ फोन इतनी बड़ी चीज है कि रोटी करते हो तो भी उठाने का। अम्मी खाना बना रही थी और फोन की घंटी बजी तो क्या करती है, तो बच्चे के जहन में आया ओ फोन इतनी बड़ी चीज है कि अम्मी खाना बनाती हो तो भी, अरे बोलो, अम्मी कपड़े धो रही थी और फोन बजा, मम्मी क्या करती है, झट से यूं नल के नीचे हाथ करके भागकर फोन उठाती है, अरे भाई क्या हुआ, कहा बच्चे की मेंटेलिटी बनती है कि फोन इतनी गंभीर चीज है कि बर्तन कपड़े भी धोते हो तो फोन उठाने जाने का। अम्मी सोई हुई थी भर नींद में थी, अब्बा सोए हुए थे भर नींद में थे और फोन की घंटी बजी तो अब्बा फोन उठाकर यूं फेंक देते हैं, अम्मी फोन उठा करके मेरी नींद में डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं जी, वो तो सोए हुए थे ने, क्या सोए हुए थे तो अभी फोन उठा लेते हैं, तो छोकरा सब देखता है वो समझता है ओ फोन ऐसा गंभीर चीज है कि नींद में भी उसको उठाना चाहिए। अब ये बच्चा देख रहा है देख रहा है देख रहा है, अब जब वो भी बड़ा होगा तो उसकी भी इसकी अजमत दिल में आ गई, अच्छा सोए हो तो भी उठाने का, कपड़े हो तो भी उठाने का, रोटी खाते हो तो भी, खाना खाते खाते भी उठाने का, बोलो खरी बात खोटी बात, ये बच्चा देखेगा। अब उसी घर में अजान की आवाज आई, अब्बा सोए थे अब कोई फर्क नहीं पड़ा, अब अजान हुई मां सोई थी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बच्चे ने देखा फोन आया था ये था और अजान हुई तो ये है, मतलब ये बहुत बड़ा गंभीर नहीं है, खाना बना रहे थे अजान हुई कोई फर्क नहीं पड़ा, बर्तन धो रहे थे अजान हुई कोई फर्क नहीं पड़ा, अब्बा दोस्तों के साथ बैठे थे और अजान हुई कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो बच्चे के अंदर गैर महसूस तरीके से आएगा कि ये कोई बांधे वाली बात नहीं है और ये बांधे वाली बात है, तो ये बच्चे का ये जहन किसने बनाया, अरे बोलो किसने बनाया, माँ बाप ने। हदीस में आता है बच्चे को अल्लाह मुसलमान पैदा करते हैं, माँ बाप उसको विचारधारा बदल देते हैं, हम अपने बच्चों की विचारधारा न बदलें, अपने घर में अच्छा बोलें अच्छे रहें ताकि बच्चे हमारी, और उसमें सबसे ज्यादा अच्छा बोलने के जिम्मेदार कौन है, माँ, क्योंकि छोकरे जो है ना वो माँ की बोली बोलते हैं बाबा की नहीं, किसकी, अपने किसी को पूछे कि तुम्हारी भाषा कौन सी है तो तुम क्या पूछते हो, तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है जी, तो क्यों, तो बाबा की बोली अलग होती है ना, छोकरे जो है वो किसकी बोली असर लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी कौन सी भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी में कहते हैं मदर टंग, फादर टंग कोई बोलता है, मदर टंग, मातृभाषा, तो ये मातृभाषा, तो माँ की बोली वो बोलती है, तो जब बच्चे माँ की बोली समझती है इसलिए उलमा कहते हैं माँ जो है बाप से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, माँ बाप से ज्यादा नेक होनी चाहिए, क्यों, छोकरे माँ की बोली बोलते हैं, वो जैसी होगी छोकरों पर वही छाप पड़ेगी, बच्चे बंदे हैं माँ के पेट में, ये पेट हया वाला है, ये पेट तकवे वाला है, ये पेट अल्लाह के डर वाला है, तो ये माँ का पेट बच्चे के लिए डाई है, डाई है। तुम क्या कहते हो डाई को, फरमा सांचा, अब ये जैसा पेट होगा ऐसा छोकरा बनेगा, अब ये पेट में तो छोकरा बन रहा है और माँ गंदा देखती है, पेट में छोकरा बन रहा है माँ गंदा सुनती है, पेट में छोकरा बन रहा है माँ गंदा बोलती है, पेट में छोकरा बन रहा है और मम्मी अब्बा बाजारों में घूमते हैं, उस पेट पर कितने नामहरमों की निगाह पड़ती है, गंदों की निगाह पड़ती है, फिर उस पेट में कैसा छोकरा बनेगा, जुनैद बगदादी बनेगा, अरे बोलो जुनैद बगदादी बनेगा, का माँ बाप से ज्यादा नेक होनी चाहिए, एक तो उसको नेक बनाने के, उसको कौन नेक बनाएगा, तो उसका शौहर बनाएगा, उसका शौहर बनाएगा, जैसे घर की सारी चीजें शौहर लाता है, घर में फ्रिज शौहर लाता है, एयर कूलर शौहर ला, सब चीजें मर्द फिक्र कर, ऐसे इसके नेकी की फिक्र मर्द करेगा, इसके नेकी की फिक्र मर्द करेगा, तो हमें उसकी फिक्र करनी पड़ेगी, वरना अगर हमने फिक्र नहीं की तो मोहल्ले में दूसरी औरतें अगर फिक्र उसकी बनाकर जाएगी पता नहीं क्या क्या समझा कर जाएगी, तो उसकी फिक्र के लिए उसके साथ खाली बातें नहीं, समझाने के लिए तो हम बुजुर्ग बन गए और फिर समझाने के बाद 10 मिनट के बाद हम हमारा टोन बदल दें, अपने रवैये अच्छे रखो, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वाशिरुहुन बिल मारूफ, उनके टोन अच्छे रखो, तुम्हारे उनके साथ रहनी करनी अच्छी रखो, अगर तुम्हारी उसके साथ रहनी करनी अच्छी हो गई वो तुम्हारी विचारधारा में शरीक हो जाएगी, रहनी करनी अच्छी नहीं है तो वो मजबूरी में तुम्हारे साथ दिन गुजारेगी, उसकी विचारधारा अच्छी नहीं होगी, अगर वो सही हो गई तो अपने बच्चों को संभाल लेगी, अपने बच्चों को हम नहीं संभाल सकते, हमारे बच्चों को हमारी घरवालियां संभालेगी, इसलिए हमारे घर वालियों को हमें अच्छे विचारधारा के बना, उसके लिए उसको टोन अच्छे। किताबों में आता है जिस घर की मियां बीवी में भेदभाव हो जावे, विचारधारा में डिफरेंस पड़ जाए, उस घर को उजाड़ने की किसी को जरूरत नहीं, मियां बीवी का भेदभाव घर को उजाड़ देगा। विचारधारा में मतभेद, विचारधारा में अरे बोलो तो खरे, विचारधारा का मतभेद मियां बीवी के घर को उजाड़ देगा, बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस घर में मियां बीवी का मतभेद एक है, पूरी दुनिया की ताकत उस घर को उजाड़ नहीं सकती। तो मियां बीवी में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद मत अच्छा बनाने के लिए शोहर को बीवी को कवर करना पड़ेगा। वो कवर करने के लिए वो मोहब्बत चाहती है, मोहब्बत उसको देना चाहिए। क्या देनी चाहिए? हम जब चाहें तब जाकर आंख दिखाते हैं, मजाले में अपने घर में चला जाऊं कोई चूं भी करे, हम क्या कहते हैं, मैं घर में जाऊं मजाले कोई चूं भी करे, तो फिर तो तू घर में शोहर नहीं है, तू तो पुलिस वाला है, ये तो पुलिस वाला हो गया। अल्लाह के नबी सलाम की घरवालियां, उनसे तो हुजूर सलाम गम्मत करते थे, शरीयत के हुदूद में गम्मत भी जायज है, तो गम्मत करनी, हमारे बच्चे कोई मजाले कोई गम्मत कोई चूचा करे, तो फिर तो अब्बा नहीं है, तो पुलिस वाला है। अब्बा तो कैसे हो, छोकरे जावे तो कोई पैर में लटक जावे, कोई कंधे पर चढ़ जावे, कोई मोहब्बत करें, ऐसे ऐसे अब्बा वा तो होना चाहिए, पुलिस वालों जैसा थोड़ी। हमारे नबी अलैहि सलाम घर में जाते थे ना, तो ये घोड़ा बनते थे, घुटनों पर यूं घोड़े टेक, यहाँ बच्चों को बिठावे और घर में गोल गोल यूं घूमते थे, अब्बा तो ऐसा होता है। हमारे नबी नमाज पढ़ते थे, हसन और हुसैन खेलते थे, तो यूं यूं घोल कर यूं निकलते थे, यूं गोल गोल निकलते थे, तो अल्लाह के नबी कुछ नहीं बोलते थे, तो छोटे बच्चे हैं, अपनी नवासी को यहाँ बिठा कर बाजार लेकर जाए यहाँ कंधे पर, अपने नमाज पढ़ते हैं अपना छोकरा यूं कंधे पर बैठ जावे, तो अपने उसकी अम्मी को क्या करें, अबे देखती नहीं है इतना बड़ा हजरत नमाज पढ़ रहा है और ये मेरे कंधे पर चढ़ गया, यूं करके एक ठोक देंगे उसकी माँ को। बोलो ऐसा करे कि ना करे, आगे मुसल्ले पर आ जावे छोकरा तो उसकी माँ से लड़ाई करे, क्यों? हमने दीन सीखा नहीं। क्या नहीं सीखा हमने? घर का दीन नहीं सीखा। हुजूर अपने घर वालों के साथ खाने बैठे, अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास, और खाना बोटी, उस जमाने में गोश्त बनता था ना, तो जैसे कच्चा थोड़ा सा उसको यूं मुंह से खाने का होता है, तो अम्मी जान ने यूं खाया, तो अल्लाह के नबी ने वही गोश्त उठाया और वहीं से मुंह लगाया जहां अम्मी जान ने लगाया था, और बता रहे हैं देख मैं भी वहीं से खा रहा हूं, बता रहे हैं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये हमको सिखाने के लिए। पानी पिया अम्मी जान ने, यूं होंठ लगाया, तो अल्लाह के नबी ने वही होंठ लगाकर पिया और बताया देख मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो ऐसी मोहब्बत देने की होती है, घर वालों को मोहब्बत देने की होती है। तो घरवाली तुम्हारी विचारधारा में यूं हो जाएगी, वो छोकरों को साचव लेगी, छोकरों को, और फिर जब छोकरे छोटे हो तो उनको प्यार दें, और बड़े हो जाएं तो घर वालों के साथ ऐसे रहो कि तुम्हारे आने का वो इंतजार करें, एवं जीवो कि तुमने फरी याद करें, फरी एवं ना जीवो के पछी फरियाद करे, एवं ना जीवो के पछी फरियाद करे, एवं जीवो कि तुमने फरी याद करे। घरवालियां ऐसी कहती थी कि हुजूर हमारे पास आते थे तो ऐसे रहते थे कि हमको ऐसा लगता था हमको छोड़कर जाएंगे ही नहीं, पर जब अजान होती थी तो ऐसे चले जाते थे जैसे हमको ओढ़कते ही नहीं है कि अजान हो गई। तो घर वालों के साथ ऐसा प्यार वाला माहौल, बच्चों के साथ छोटे हों तो ऐसे, बड़े हों तो हमारे गुजर कहते थे कि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, जब तुम्हारे जूते न उसके जूते एक साइज के हो जाएं, तो उसको छोकरे मत समझो, अब एक साइज के जूते हो गए वो तुम्हारा दोस्त समझो, उसको दोस्त बनाकर संभाल लो, अगर दोस्त बनाकर तुमने नहीं संभाला तो तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे उसके वाट देखते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो दोस्त बनाकर उसको बर्बाद कर देंगे। अगर तुमने दोस्त बनाकर बच्चे को नहीं संभाला तो बाहर लोग इंतजार करते हैं, वो उसको दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। हम घर में जाकर ऑर्डर करते हैं, स्कूल गया था नहीं गया था, आज ट्यूशन गया कि नहीं गया, इतने मारक काय को आए, अलग भैया आए क्या करेंगे, तो हम चोट पड़ते हैं, वो इतना कंटाल जाता है छोकरा कि फिर बब्बा एक दरवाजे से घर में दाखिल होते हैं, वो छोकरा दूसरे दरवाजे से, अरे बोलो तो खरे, बाहर, उसको बाबा के आने की कोई खुशी नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती। हम लोग अभी चिल्ले में थे तो वापस हो रहे थे तो सब खुश थे कि चिल्ले से घर जा रहे हैं तो खुशी होती है। एक बच्चा मुरझाइला था, क्या हुआ कि मैं कितने मजे में हूं, अब घर जाऊंगा तो मेरा अब्बा का नाटक देखने का, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अभी हम लोग एक जगह इज्तिमा में गए, कहा मुझे सबसे ज्यादा नफरत मेरे बाप से है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कि मेरे माँ को ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है, मुझे मेरे बाप से नफरत है। मैंने कहा कितने भाई बहनों का मैं अकेला बेटा हूं। अभी इसी हफ्ते में एक लड़का मिला, क्या मेरे माँ बाप मर जाए तो मुझे आज, कल मरते हो तो आज मर जाए मुझे हंसी खुशी है, मेरे बाप के मरने की मुझे खुशी है, मेरा बाप मर जाना चाहिए। कि नफरत पैदा हो जाती है बच्चों की, वो बोल नहीं सकते, लेकिन जब दाव लेने का मौका आता है चुपते भी नहीं है, तो नफरतें पैदा हो, ऐसी हरकतें नहीं करें। फिर हम ऐसी हरकत के बाद ये चाहेंगे मेरा छोकरा बुजुर्ग बन जाए तो बन जाएगा, इसके लिए घर की तालीम, घर में अच्छे रवैये, अच्छी रेहड़ी करनी। तालीम में तो हजरत जी हो गए, तालीम के बाद शैतान का दादा हो गया, गाली देता है ये तो, घर में गाली देता है माँ को बेटों को, तालीम में तो हजरत जी जैसी बातें करता था, और तालीम के बाद शैतान को शर्म आवे ऐसी बातें करता है। तो छोकरे तो देखते हैं कि टीवी कलक तो ऐसा करता है, तालीम आते ऐसे ऐसा करता है, अपने रवैये अच्छे, अपने टोन अच्छे, रेहड़ी करनी अच्छी, घर का माहौल अच्छा, छोकरे सच में जाएंगे, वरना इस माहौल में छोकरे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपनी फिक्र करें, घर वालों की फिक्र करें, हम हुजूर की उम्मत ही है, फिर पूरी उम्मत की फिक्र करें, तो अपनी मस्जिदवार जमात में जुड़ें, एक एक घर पर जाकर ये भलाई एक एक घर में जिंदा हो जाए, उसके लिए घर घर की मुलाकातें करें, उससे मोहल्ले का माहौल अच्छा हो जाएगा। अगर तुमने अपनी फिक्र की, अपने घर की फिक्र की, मोहल्ले में ये सारी बातें फिक्र जिंदा हो उसकी फिक्र नहीं की, तो वहां जो आड़ा उड़ा होगा थोड़े दिनों में वो यहां भी आ जाएगा माहौल। भाई मोहल्ले में कीचड़ हुआ, मेरे घर के आगे कीचड़ नहीं है पर मोहल्ले में है, मेरे छोकरे तो उसी कीचड़ में से आएंगे, मदरसा भी वहीं से जाएंगे, स्कूल भी उसी कीचड़ में से जाएंगे, तो जब जूतों में चप्पल है, जूते चप्पल पहने हैं, तो उसके तड़िए में कोई सोना चांदी थोड़ी लगेगा, क्या लगेगा? कीचड़। और वो चप्पल कहाँ आने वाले हैं? घर में, तो कीचड़ कहाँ आएगा? तो मेरे घर को तो मैंने संभाल लिया, मोहल्ले का आड़ा उड़ा माहौल है, अगर वहां हमने मेहनत नहीं की तो वहां जो होता है वो कहाँ होगा? वो हमारे मोहल्लों में होगा। इसलिए अपने मोहल्लों में गश्त के जरिए से, मुलाकातों के जरिए से अच्छा निजाम बनाए, ताकि घर मोहल्ले की फिजा अच्छी बने और ये विचारधारा अच्छी बने। उसके लिए अल्लाह के रास्ते में अपने बच्चों को भेजा करें। ये माहौल आदमी को गंदा कर देता है, तो कम से कम अल्लाह हिम्मत दे हर साल चार चार महीने लगावे, आठ महीने इस गंदे माहौल में थे, अब चार महीने में हर साल चले जावे, ताकि जागृति हमारे अंदर भी रहे, हमारे छोकरों में जागृति रहे। तो हर साल चार चार महीने चले जाया करो, कि आठ महीने घर पर रहो, फिर चार महीने हर साल जवान में जाया करो, ताकि जागृति अच्छी रहे, छोकरों को भेजा करो। और कोई चीज सुधारेगी नहीं, मार किसी को नहीं सुधारता, जेलें किसी को नहीं सुधारती। अच्छा बताओ, पिछले जमाने के मुकाबले में इस जमाने में जेलें बड़ी हो गई, बढ़ गई या छोटी हो गई, कम हो गई? अल्लाह बोलो तो खरे, जिले जिले में जेलें बढ़ गई बनाई या कम कर दी? बढ़ गई। तो जेलें बढ़ी तो दुनिया में गुना क्राइम बढ़े के कम हुए जी? तो जेलें बढ़ने के बाद क्राइम कम होने चाहिए बढ़ने चाहिए? अल्लाह बोलो तो खरे, कम होने, पढ़ो क्या हुआ, बढ़ गए। तो ये समझाता है कि मारने से, जेलों में भेजने से क्राइम कम नहीं होते, अंदर की सोच बदले, अंदर की फिक्र बदले, रेहड़ी करने बदले, तो वो बनाने की जरूरत है। ये तबलीग की मेहनत उसको बना देगी, उसको मानस बना देगी। तबलीग की मेहनत क्या बना देगी बोलो? अच्छा मानस। दुनिया में मानसों की कमी नहीं है, अच्छे मानसों की कमी है, मानसों की घट नहीं है। किसकी घट नहीं बोलो? अरे बोलो तो खरे, दुनिया में मानसों की घट नहीं है, बहुत है। तो घट किसकी है? सगे भाई पर कोई विश्वास करने को अभी तैयार नहीं है। किस पर बोलो? सगे भाई पर। विश्वास पात्र मानस नहीं मिलते हैं, तबलीग मेहनत भरोसा पात्र मानस पैदा करेगी, अल्लाह का डर जिंदगी में पैदा करेगी, अल्लाह का खौफ पैदा करेगी। हाँ, इसलिए इसको आप मामूली चीज ना समझो, इसलिए वक्त वेड़ा से वक्त लगाया करो। ये जिला पैदा करेगी, होती है ना, जितनी रगड़ाई हो इतनी चमक पैदा होती है, जितनी रगड़ाई हो इतनी, छोकरे की रगड़ाई, अपनी रगड़ाई, अपनी घरवाली को तीन दिन दिन लेके जाया करो, मोहल्ले की तालीम में उसको भेजो। इसको ऐसा ना समझो यार ये तबलीग में चिल्ले में भेजते हैं, अल्लाह भाई एहसान मान के भेजते हैं। ये तो ऐसा है कि जैसे हमारा छोकरा बीमार हो गया तो उसको उचक्कर ले गए हॉस्पिटल इलाज के लिए, यार ये तो खराब नहीं है, हॉस्पिटल में उचक उचक्कर ले जाता है, तो अल्लाह का एहसान मान कोई नहीं ले जा रहा था, ये तो ले तो गया। ऐसे ही हॉस्पिटल तबलीग की मेहनत जो है ना, रूहानी हॉस्पिटल है। आदमी करने के कामों का आदि बनता है, न करने की चीजों का आदि बन जाता है कि इसको छोड़ दें। इसलिए वक्त भी लगाना, अच्छा वक्त लगाना, ताकि हम केड़वा जाए, क्या हो जाए बोलो? अरे बोलो तो करें, टेवा जाए, क्या हो जाए? अच्छे जीवन पर टेवा जाए, अच्छे जीवन की आदत पड़ जाए और अल्लाह पर अच्छा विश्वास आ जाए। इसलिए इसको माथे पड़े लाना समझो। کیسا نہ سمجھو بولو تو کھڑے ماتھے پڑے لا ودھارے کا نہ سمجھو اس کو ضرورت کسی چیز سمجھ کر ہر سال کم سے کم اگر چار مہینے کی ہمت نہیں ہوتی چلا تو ہر حل میں لگا دیا کرو چلا تو ہر حل میں لگا دیا کرو اپنی ضرورت سمجھ کر تاکہ یہ تازگی آتی رہے کرو گے انشاءاللہ کون کون کرے گا اچھا کیا کیا کرو گے کوئی بات نہیں سمجھ نہیں پڑی دوبارہ شروع کرتا ہوں مزہ نہیں ہے بھائی سمجھ نہیں پڑی تو کیا کریں گے پھر چاچا کہیں گے کہ چھوڑو تو چائے پی میں پر تم کرو تو میں چھوڑوں کیا کیا کرو گے بولو بھائی جی مسجد سے جڑے رہیں گے نمازیں نہیں چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ بچوں کی کیئرنگ کے لیے بچوں کو ٹائم دیں گے ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے گھر میں جاتے ہی موبائل میں لگ جاتے ہیں امی بھی موبائل میں ابے بھی موبائل میں اب بچے کیا دیکھتے ہیں امی ابا موبائل میں پھر چھوکرے بھی موبائل میں لگیں گے موبائل کا کام جتنا بھی ہو گھر میں گھر کے باہر کر لو گھر میں جاؤ یہ گھر والوں کا ٹائم دھندے کا ٹائم دھندے کو گھر کا ٹائم گھر کو تو گھر میں بس امی کے ساتھ بیٹھو ابا کے ساتھ بیٹھو بھائی بہنوں کے پاس بیٹھو بیوی بچوں کے پاس بیٹھو گھر میں جاتے ہی موبائل تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں ابا بھی موبائل وہ بھی موبائل میں لگ جائیں گے بچوں کی پیار محبت سے بات ہو خیر تو پوچھنا ہو سمجھنا ہو تو گھر والوں کو ٹائم دیں مسجد کو ٹائم دیں محلے میں چلیں پھریں یہ حضور علیہ السلام کی نبی والی محنت ہے جب ہم اس میں استعمال ہوں گے ہمارے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائے گی اللہ تو اس کی مدد کر جو ہمارے دین کی مدد کرے تو بہت بڑی اللہ کی نبی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائے گی اور ان چیزوں کے فکر کے ساتھ سالانہ ماہانہ وقت لگایا کرو ماہانہ وقت لگاؤ تین دن اس سے تمہیں تازگی آئے گی چلا کم سے کم لگاؤ اس سے تازگی آئے گی اور ایک دو چیزوں کی فکر کر لو رشتے کوئی نہ توڑو اپنا پیٹ کا جتنے بھی رشتے ہیں کوئی نہ تمہارے ساتھ برائی کی وہ اس کا اپنا عمل ہے بھائی کتے نے کاٹا تھا ہم کتے کو نہیں کاٹتے ہیں کتے نے اگر کسی کو کاٹا تھا ہم کسی نے ہم سے غلط تعلق کیا ہم نہیں کریں گے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق کی سطح کیا ہے تم اچھے اخلاق والے ہو اس کی علامت کیا تم اچھے اخلاق والے ہو سب کہتے ہیں میں تو اخلاق والا ہوں اچھے اخلاق کی پہچان کیا اوڑکھن کیا تو اچھے اخلاق کی اوڑکھن کرائی کہ اس کے ساتھ جوڑو تو جو تم سے توڑے سل من قطع جو آپ سے کاٹ دے اس سے جوڑو واعف عمن ظلمک جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو واحسن الی من اساء الیک جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھائی جو اچھائی کرے اس کے ساتھ تو سارے اچھائی کرتے ہیں لیکن جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو یہ نشانی ہے تو ہم رشتے کو نہیں توڑیں گے اور ٹوٹا ہوا ہے توبہ بھی کریں گے اور فوراً جا کر اس کو جوڑ دیں گے کرو گے انشاءاللہ اور کمائی کی شکل کو پاک بناؤ یہ بہت اہم بات ہے اپنی معاشرت اور معاملات کو صاف کر لو کسی سے رشتے نہ ٹوٹیں اور ہماری کمائی کا نقشہ ساری بزرگی ایک طرف اور کمائی کا نقشہ ایک طرف اگر آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن پیٹ میں حرام کا نیوالا چلا گیا کتابوں میں آتا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا نیوالا گیا اس کے لیے صاف ہونے کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے وہ صفائی جہنم میں ہی ہوگی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کے پیٹ میں جانے کے بعد کعبہ شریف میں چلا جائے اور کعبے کا پردہ پکڑ کر دعا مانگے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی جس کے پیٹ میں حرام کا نیوالا چلا گیا حجاج ایک بادشاہ تھا بہت ظالم بادشاہ تھا جب وہ بغداد گیا تو اس نے دیکھا بغداد میں کچھ بزرگ لوگ ہیں کہ وہاں کوئی بادشاہ کوئی ایسا آتا ہے تو اس کے خلاف بد دعا کرتے ہیں تو بادشاہ ختم ہو جاتا ہے تو حجاج نے کیا کیا کہ میری وہاں دعوت ہے تو سب کو بلایا ان کو بھی بلا لیا وہ جو بزرگ تھے جو لوگوں پر بد دعا کرتے تھے ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی کھانا کھلایا پھر کہا اب جاؤ آندھا نہیں ہے اب تم کو جتنی بد دعا کرنے وہ کرو ارے بھائی کیوں کیا ہوا کہ آج جو دعوت کی تھی اس میں نے تم کو حرام کا کھلا دیا ہے اور حرام کا کھانے والے کا تو حال یہ ہے کہ وہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی قبول نہیں ہوتی تمہاری میرے حق میں کہاں قبول ہوگی جتنی کرنی ہو کر لو تو اس نے اس کا توڑ یہ کیا کہ ان کو حرام کا کھلا دیا حرام کا نہ کھائیں چٹنی روٹی کھا لیں حرام کا نیوالا پیٹ میں نہ جانے دیں حرام کا نیوالا پیٹ میں نہ جس اولاد کو تم نے حرام کا کھلایا اس اولاد سے نیکی کی امید کرو گے جس بیوی کو تم نے حرام کا کھلا دیا وہ بیوی سے اچھی نسل کی امید کرو گے اولاد نسلیں برباد ہو جائے گی اور آخرت کا اس دنیا کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے
حرام نہ کھائیں, کسی کی میراث ہمارے پاس باقی نہ رہے, کسی کا مال ہمارے اوپر باقی نہ رہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو حضور یہ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا مال کا حق تو باقی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا کہ مالی حق باقی ہے تو حضور فرماتے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا, پھر نماز پڑھتے ہیں. تو حضور پہلے قرضہ ادا کرتے پھر نماز پڑھتے تھے. اور اگر حضور کے پاس نہ ہو تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ آدمی قرضہ لے کر لوگوں کا مرا ہے, اس کا کوئی ادا کر دے گا؟ اگر کوئی ادا کر دیتا تو حضور نماز پڑھتے تھے, اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو حضور فرماتے تھے میں نماز نہیں پڑھتا, جاؤ تم ہی پڑھ لو. اس کی حضور نماز نہیں پڑھتے تھے. تو کسی کے پیسے کھا کر نہ مریں, حرام کا کھا کر نہ مریں, میراث کا کھا کر نہ مریں, اور حرام کی کمائی نہ آنے دیں. ورنہ جب پیٹ میں حرام چلا گیا تو پھر وہ لڑ وہ اس کی نسل گئی, برباد ہو جائے گی. اس لیے کسی سے رشتے نہ توڑیں اور حرام کا نہ کھائیں. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ, اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ تاکہ تازگی ہوتی رہے. جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں؟ کون کون اللہ کے راستے میں جاتے رہیں گے؟ ماشاءاللہ. اللہ ہمت دے ہر سال چار مہینے جاؤ, اور نہیں تو کم سے کم چلا جایا کرو. جاؤ گے انشاءاللہ؟ اس اجتماع سے کون کون جا رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. اچھا اب کون کون نیت کرتا ہے کہ ابھی دعا سے ابھی دعا کو ایک 24 کلاک باقی ہے, کل 9 بجے آخری مجلس ہوگی, اس سے پہلے ابھی ہم نے نیت نہیں کی تھی, ارادہ نہیں کیا تھا, لیکن میں انشاءاللہ ابھی نیت کرتا ہوں کہ کل دعا تک میری طے ہو جائے تے, اور اللہ کرے میرا سفر ہو جائے. ایسی کون کون نیت کرتا ہے کہ میری اب تک تو نیت نہیں تھی لیکن میں اب نیت کرتا ہوں, چلو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اللہ کرے میرا ہو جائے تو میں بھی چلا جاؤں گا. ایسی کون کون کوشش کرے گا؟ چلو بتاؤ. ماشاء اللہ. اور اچھے سے اٹھاؤ نات, جو جو نیت کر رہے ہیں وہ اچھے سے اٹھاؤ. ماشاء اللہ واہ واہ, اللہ توفیق دے قبول فرمائے. بھائی میں تو سبھی سے گزارش کروں گا کہ آنکھ کھولی تیانتی سوار, آنکھ کھولی تیانتی سوار. اب تک تو سستی تھی, اب بات سمجھ میں آئی تو اب سستی نہ کریں, آنکھ کھول کر صبح کر رہے ہیں. تو جنہوں نے ارادے کیے بہت مبارک ہیں, جو ارادے کرنے میں باقی ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی نیت کر کے ٹرائی کریں. اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ ہم نیت کرنے میں کمی نہ کریں اور اپنے بس کی کوشش کریں. اللہ کر دے تو چلے جانا, نہ ہو تو کوشش کرتے رہنا. بولو یہ تو ہم کر سکتے نہیں کر سکتے. تو نقد ہو جائے اس کی کوشش کو کون کون نیت کرتا ہے؟ میں بھی نیت کرتا ہوں, چلو میں بھی کوشش کروں گا. چلو بتاؤ. اور کہ بھائی میں آنکھ کھلی ہے اب سویرا کر دوں اور پکے کوشش کروں گا. کوئی بھی نہیں کرے گا؟ اچھا اور ذرا اچھے سے اٹھاؤ تو پھر. اور ماشاء اللہ, اللہ سب کو توفیق دے قبول. باقی یہاں ابھی تم ماشاء اللہ آ گئے ہو, ابھی اور مجمع دن بھر آئے گا, اسی کی باتیں کرو, اسی کے چرچے کرو, اور آپس میں لوگوں کو اسی کے لیے تیار کرو. ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم نہ گزارو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور دن بھر کے مجلسوں میں اور اسی کے چرچے اسی کے مذاکرے, اور جب واپسی ہو تو اپنی مسجد کے ماحول میں ان سب چیزوں کی فکر کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ توفیق دے قبول فرمائے. بس چاچا ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وما بحمدہ لا الہ الا اللہ.
چالو